ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा राधे मेरी स्वामिनी मेरा धे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो जय राधा माधव किंज बिहारी
राधा
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव
कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी
जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुन तीर वन जारी, यमुन तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुन तीर वन जारी, यमुन तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा।
माधव राधे राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे
राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी
राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे
राधा गिरिधरी
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदुआ जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदुआ जय
सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदुआ जय सुभद्रा प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद
जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद
जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
नित्य गौर हरि बोल राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्निपप्र प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि युच्ये वदन्तं नृत्यं तं द्रुतमाश्रु निर्जरचये सिञ्चन्त भूर्वेतलं गायन् निज पार्षदे परिवृतम् श्री गौरचन्द्रं नमः श्री गौरचन्द्रं नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्ण कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने यस्या कदापि वसना चलखेलनोत धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभा नुभुवो दिशेपि यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलम् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिषतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया हपुराणगुह्यम् तं व्यास सूनुमुपया मि गुरु मुनीना श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण हवे पिबस्वा मृत तदेव गोविंद दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गो पवदु प्रतीक्षणं पिञ्जरसारिकाणां स्खलद्गिरं वा चयितुं प्रवोतो गोविन्द दामो धर्मा प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदतां भुरतेर्महतभि यैमा पुरो विभो निर्माय शेते यदमूष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणनशो रसषोडशात्मक सुलङ्कं श्रेष्ठ भगवान वचन में। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवतम के श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस छठे दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रवण करने से समस्त तीर्थ, समस्त यज्ञ, समस्त योग ध्यान का फल प्राप्त होता है। संसार में कई प्रकार के साधन हैं मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। उन साधनों में एक साधन है तपस्या करना, और भी कई सारे साधन है यज्ञ करना इत्यादि। और यज्ञ में भी कई कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं। और प्रायः कलयुग में ये सारे यज्ञ असंभव हैं, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ उसे कहा जाता है जिसे अश्वमेघ यज्ञ करना हो उसे एक घोड़ा छोड़ना पड़ता है, और वह अश्व व घोड़ा पूरे भूमंडल में घूमता है। यदि किसी व्यक्ति को जिसने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए घोड़े को छोड़ा है उसमें कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो घोड़े को चुरा लेते हैं और जिसके साथ अश्वमेघ यज्ञ करना होता है उसके साथ युद्ध करते हैं। तो इस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा को पूरे भूमंडल के राजाओं के साथ युद्ध करना होता है, तब जाकर वह अश्वमेघ यज्ञ कर सकता है। और उस यज्ञ में भी कई सारे शुद्ध ब्राह्मण की जरूरत होती है, शुद्ध मंत्र की आवश्यकता होती है, शुद्ध घी की आवश्यकता होती है। ऐसे करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ कोई करे और श्रीमद् भागवतम की एक कथा सुने तो करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ से ज्यादा फल श्रीमद् भागवत कथा का मिलता है। इतना ही नहीं, लोग पवित्र होने के लिए तीर्थाटन करते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में स्नान करते हैं, परंतु एक जगह कहा गया है, न गंगा न गया काशी, पुष्कदम न प्रयाग कम, शुक शास्त्र कथा यास्य पले न समताम नयेत। ये समस्त तीर्थों में जाकर जितना फल मिलता है उतना फल सुखदेव गोस्वामी से के मुख से निकले हुए यह भागवत कथा सुनने से मिलता है। गंगा में स्नान करने के लिए तो टिकट खरीदनी पड़ती है, ट्रेन में बैठकर दो दिन तक देहरादून में बैठो तब जाकर वहां पहुंचते हो। परंतु भागवत रूपी गंगा प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे घर में, हमारे घर के करीब आ चुकी है, तो हम सब भक्तों को इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। भक्त लोग इस भागवत गंगा में स्नान करते हैं, परंतु कुछ दुर्भाग्य जीव ऐसे हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा ये भागवत गंगा सभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बह रही है, परंतु कुछ दुर्भाग्यशाली जीव इसमें स्नान करने की बात तो दूर रही, इसका आचमन भी नहीं करते हैं। कई लोग यहां से गुजर रहे हैं परंतु इस भागवत रूपी गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं। कारण एक है, क्योंकि उनके जीवन की सुकृति बहुत कम है। भागवत वही सुन सकता है जो सुकृतिशाली हो। एतस्माद् परम कश्चित् मनोशुद्धते न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् श्रीमद् भागवतम् लभेत। श्रीमद् भागवत वही सुन सकता है जिसके हृदय में, जिसके जीवन में सुकृति का उदय हो गया। तो बिना सुकृति वाला इस भागवत कथा में आकर बैठ नहीं सकता, और यदि आ भी गया तो 10-15 मिनट में बाहर निकल जाता है। हमारे भक्त बहुत सुंदर दृष्टांत के साथ समझाते हैं कि भागवत सुनने के लिए सुकृति की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया में उस समुन्द्र के तट पर कोई खड़ा है और उस व्यक्ति को भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी और सोचा अब कुछ खाना है, खाना है। देखा तो जेब में केवल 5 रुपये थे, देखा कि 5 रुपये है और भोजन करने के लिए आया तो उसके सामने 2 ऑप्शन था, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया में ताजमहल होटल है, आप सब जानते होंगे। तो उसने देखा कि इतनी सुंदर होटल है, या तो होटल में जाकर खाऊं या तो नीचे वड़ा पाव की जो गाड़ी है वहां पर खा लो। परंतु उसके मन में इच्छा हुई कि चलो ताजमहल में जाकर देखते हैं, वहां जाकर भोजन करेंगे। तो वो व्यक्ति ताजमहल होटल में चला गया और जाकर बैठा। बैठकर जब मेनू खोला तो उसमें उस होटल में सबसे छोटी सी छोटी आइटम 500 रुपये से शुरू होती है और उसके जेब में केवल 5 रुपया था। वो मेनू देखकर ही वहां से उतर गया। उसने सोचा कि नहीं, ये वड़ा पाव ही ठीक है हमारे लिए। जिसके जीवन में सुकृति नहीं है वह भागवत नहीं सुन सकता है। जिसके पास सुकृति कम है वे तो अलग अलग मत, अलग अलग पथ में घूमते रहेंगे। वास्तव में सुकृतिशाली जीव ही यहां पर आ सकता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी सुकृति उदय हो चुकी है और भागवत ग्रंथ सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। तो आइए प्रभुपाद जी की इस असीम अनुकंपा का, असीम कृपा का हम लाभ उठाएं। पिछले 5 दिनों से हम यहां पर भागवत के 6ठे स्कंद के 1ठे अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा भगवान के एक भक्त की है। भाग्य में भी और बड़ा भाग्य यह है कि हम भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। शास्त्र में कहा गया है यदि भक्तों को प्रसन्न करना हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुनानी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से और भगवान की कथा सुनाने से भक्त प्रसन्न होते हैं। और यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो कहते हैं भक्त की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भक्त की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अजामिल जैसे भक्त की कथा, फिलहाल तो अजामिल बहुत बड़ा पापी है। एक पक्ष कह रहा है कि ये बहुत बड़ा पापी है और एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। बहुत बड़ा संवाद चल रहा है, बहुत बड़ा विवाद है। यमदूत कह रहे हैं कि अजामिल पापी है इसलिए इसे लेने के लिए हम आए हैं, और भगवान श्री विष्णु के 4 दूत खड़े हैं और अजामिल को लेके जाने के लिए मना करते हैं और कह रहे हैं नहीं, ये पापी नहीं, ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। यमदूतों ने विष्णु दूतों को कहा कि देखने में आप तो बहुत शरीफ लग रहे हो। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कोशे ये वास सर, सब लोग इतना सुंदर वस्त्र पहने हो, आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, लगता है आप देवता हो, सिद्ध हो, गंधर्व हो। तो इतने बड़े होकर धर्मराज के नियम का खंडन क्यों कर रहे हो? वास्तव में वे 4 भगवान विष्णु के दूत थे और भगवान के समान ही सुंदर थे। मैं आपको ये कह दूं, जब व्यक्ति भजन करता है और भजन करके वैकुंठ भगवान के धाम को प्राप्त होता है तो भगवान भक्त को अपने जैसा ही बना देते हैं। इस संसार के समान नहीं, संसार में रहने वाले के पास यदि आप जाओगे और कुछ मांगोगे तो अपनी संपत्ति से बहुत कम देंगे, 5 रुपये, 10 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये, 1,00,000 रुपये। परंतु यदि कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने जैसे ही भक्तों को बना देते हैं। वैकुंठ में जितने भी पार्षद हैं भगवान की तरह ही शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर इत्यादि धारण किए हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कह दूं, यदि आप भक्ति करके भगवान के धाम में चले गए तो भगवान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब लोग पीतांबर धारण करके खड़े होंगे। तो अभी से मैं आपको कह देता हूं कि एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि उनमें जो भगवान होंगे उसमें दो चीज एक्स्ट्रा है, और वह दो चीज से भगवान पहचानने में आ जाते हैं। और वह दो चीज यह है कि भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स रेखा होगी और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि होगा। बाकी भगवान के जो दूत होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके पास यह चिन्ह नहीं है और कौस्तुभ मणि नहीं। तात्पर्य यह है, भगवान के जितने पार्षद हैं भगवान की तरह ही सुंदर हैं, उन भगवान की तरह ही उनका तेज है। तो यमदूतों ने देखा कि आप तो बहुत सुंदर हो, शरीफ लग रहे हो, तो फिर धर्मराज के नियम को क्यों तोड़ रहे हो? हम लोग धर्मराज के दूत हैं। तो विष्णुदूत ने कहा, आप धर्मराज के दूत हो हम नहीं मान रहे हैं। यदि आप धर्मराज के दूत हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो, धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का तत्व क्या है और धर्म का लक्षण क्या है? जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो यमदूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, धर्म तु साक्षात, धर्म वेद में जो लिखा गया है वो धर्म है और उसका जो उल्लंघन करते हैं वह धर्म है। विष्णुदूतों के सभी प्रश्नों का उत्तर दिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देकर यमदूत कहने लगे कि हे देवताओं, हे सिद्धो, आप जिस अजामिल का रक्षण करने के लिए आए हो, जिस अजामिल को नरक में जाने के लिए रोक रहे हो, ये बहुत बड़ा पापी है। वैसे तो पहले बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था, गुणवान था, परंतु एक दासो वनम यात पितृ संदेश कृत द्विज आदाय तत आवृत फल पुष्प समित कुशान। बहुत अच्छा व्यक्ति था, परंतु एक समय की बात, उनके पिता ने यज्ञ करने के लिए कुछ लकड़े मंगाए तो यह अजामिल की स्थिति क्या थी जब यह संवाद चल रहा था, आपके पास किताब होगी तो देख सकते हो। यमदूत अजामिल को शरीर से आधा खींच लिए हैं और आधा अंदर है आधा बाहर है और पकड़कर खड़े हैं यमदूत, और यमदूत और विष्णुदूत के बीच में संवाद हो रहा है और यह अजामिल दोनों के संवाद को सुन रहा है। और यमदूत कह रहे हैं कि यह अजामिल एक दिन जंगल में गया और जंगल में जाकर जब सब लकड़े लेकर वापस लौट रहा था, आदाय तत् आवृत वापस जब आ रहा था, तो उन्होंने ददर्श एक दृश्य देखा और वह दृश्य क्या था? दृश्य यह था, एक शूद्र किसी वेश्या के साथ शराब पीते हुए गाना गा रहा था। दोनों ने शराब पी हुई थी, दोनों के नेत्र मतवाले थे, दोनों नशे में थे, मदमस्त हो चुके थे, और नशे में होने के कारण उस वेश्या के जो कपड़े थे ढीले हो रहे थे। इस प्रकार से दोनों आपस में चुंबन कर रहे थे, गाना गा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख रहे थे। अजामिल वापस लौट रहा था, परंतु उन्होंने एक झटके में यह दृश्य देखा, देखकर वह तुरंत घूम गया। ऐसा नहीं देखना चाहिए क्योंकि वेद पढ़ा हुआ था, परंतु इस जीव के ऊपर अच्छी चीज का प्रभाव बहुत कम होता है, बुरी चीज का प्रभाव तुरंत हो जाता है। आप देखो, किसी मंदिर में जाओ, भगवान को देखो, भक्त को देखो, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है मन और बुद्धि पर, परंतु गलत दृश्य आप एक सेकंड भी देख लो तो उसकी तुरंत छाप पड़ जाती है। अजामिल दृश्य देख लिया और शास्त्र को याद कर वेद के मंत्र को याद करके अपने आप को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु न शशाक समाधातुम मनो मदन वैपिताम, काम इतना प्रबल होता है, काम का वेग इतना प्रचंड होता है व्यक्ति के मन और बुद्धि को गिरा देता है। ये काम बहुत बुरी चीज है, इसलिए व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। और यह काम प्रारंभ होता है आंख से। व्यक्ति जब आंख से गलत दृश्य देखता है तब उसके हृदय में सोया हुआ काम भड़क जाता है, जग जाता है। हजार मिल के हृदय का काम भड़का और फिर से बारंबार उस दृश्य को देखने लगा और उसके उस दृश्य को देखकर अजामिल इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया। एक आचार्य तो कहते हैं अजामिल ने वह लकड़ी का भारा नीचे रखा और मन में यही सोचा कि क्या जीवन भर यह यज्ञ का धुआं खाना है, असली आनंद तो यह शूद्र ले रहा है। सब कुछ छोड़ा और शूद्र के पास जाकर एक बहुत बड़ा डंडा लेकर शूद्र को मार डाला और मारकर उस वेश्या को अपने घर पे लेकर आया। वेश्या को घर में लेकर आया, तामे व तोषया मास पित्र पित्रे यार्थेन यावता ग्राम्ये मनोरमे कामे प्रसीदेत यथा तथा। वेश्या को घर में लेकर आया क्योंकि वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति धन होता है। प्रतिदिन डिमांड करती थी, धन चाहिए, गहने चाहिए, साड़ी चाहिए। उसके लिए अजामिल को धन की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए पितृ अर्थेन अपने पिता के पास से बहुत धन लेता था। पिताजी ना कहते थे गलत काम में मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, तो अजामिल पिता को मारता था। पिता को मारकर पिताजी का सारा धन उस वेश्या में उड़ा दिया। वेश्यास्तु मदन ज्वाला रूपे ईंधन समय हिता। भरत हरि जी कहते हैं कि यह वेश्या एक काम की ज्वाला है और यदि कोई वेश्या का संग करे तो उसमें दो चीज की आहुति पड़ जाती है, एक धन और दूसरा व्यक्ति का शरीर। दोनों की आहुति होती है इस आग में। अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति को स्वाहा कर दिया। पिताजी इस दृश्य को नहीं देख सके, बेचारे को हार्ट अटैक आ गया और मर गए। क्या करे पिता भी? और माता को, पिताजी जब मर गए तो माता को तड़पा तड़पा कर मार डाला अजामिल। अब घर में केवल वो वेश्या और अजामिल का विवाह हो चुका था, इसलिए यमदूत अगले श्लोक में कहते हैं विप्राम स्वभार्याम प्रोढाम कुले महति लंबिताम विसर सर्जा चिरात पाप स्वेरिण्यापांग विद्वधि। यह अजामिल हाथ दिखा दिखा कर कह रहे हैं विष्णु दूतों को कि ये अजामिल उस वेश्या को घर में लाकर अपनी बहुत सुंदर पत्नी को घर से निकाल दिया। कैसी पत्नी थी? कहते कुले महति, बहुत अच्छे कुल की थी, ब्राह्मण कुल की थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। ऐसा नहीं है कि दिखने में बहुत कुरूप थी। अजामिल की पत्नी स्वभार्याम प्रौढ़ाम जवान थी, बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छे कुल की थी, बहुत अच्छे घराने की थी, परंतु वेश्या में इतना आसक्त था अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। और यस यतस्ततश्चोपनन्निव्ये न्यायतो अन्यायतो धनम बभारास्या कुटुंबिन्या कुटुंबी मंदधीरयम्। अब पिता मर गए, धन संपत्ति सब समाप्त हो गई, अब वेश्या का भरण पोषण करने के लिए और वेश्या के साथ वेश्या 9 बच्चों को लेकर आई थी। ये अजामिल के बच्चे नहीं थे, अब कहीं किसी के होंगे, परंतु वेश्या और उनके 9 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अजामिल न्याय तो न्याय के द्वारा और अन्याय के द्वारा कैसे भी करके धन कमाने लगा और अन्याय का धन कमा कमा कर अपने कुटुंब का भरण पोषण करने लगा। और कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए आइए कमलोचन प्रभु का स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्योंकि असत संग हो गया था, वेश्या के साथ संग किया था, और वेश्या का भरण पोषण करने के लिए यदसो शास्त्र उल्लंघ्य स्वेर चार्यार्थी गर्हित अवर तत चिरम कालम अधायुर शुचिर मलात। अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए शास्त्र के सभी नियमों को तोड़कर, शास्त्र के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करके अजामिल अपना जीवन बिताने लगा। शास्त्र में जितने भी यम और नियम दिए गए हैं, यह किसी को देखे बिना अजामिल संपूर्ण पाप में लग गया और उनका जीवन मलात बिल्कुल अपवित्र हो गया। तत एनम दंड पाणे, यमदूत कह रहे हैं कि अजामिल इतना पापी है, शास्त्र की एक बात नहीं माना, क्योंकि इसने शास्त्र का उल्लंघन किया है। अतः इसलिए एनम दंड पाणे सकाशम कृत किलविष नेश्यामो कृत निर्वेश यत्र दंडेन शुद्ध्यति। हे विष्णुदूतो, इसने बहुत पाप किया है और पाप होकर यह अपवित्र हो गया है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए दंड पाणे दंडधारी यमराज के पास हम इसे लेकर जाएंगे और यमराज जी अपने दंड से इसे शुद्ध करेंगे, और जब यह शुद्ध हो जाएगा तो फिर से इसे मनुष्य जीवन में चांस दिया जाएगा। हे विष्णु दूतो, हम इसे लेने के लिए आए हैं, ये पापी है इसलिए हम इसे लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यमदूत कहते हैं कि क्योंकि इसने शास्त्र का उल्लंघन किया है, इसलिए इसे नरक में लेकर जाएंगे। वास्तव में इस संसार में जो भी व्यक्ति शास्त्र का उल्लंघन करता है वह नरक का भागी बनेगा। इसलिए सभी व्यक्ति को शास्त्र को और शास्त्र के सिद्धांत को भलीभांति जान लेना बहुत आवश्यक है। शास्त्र भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, और भागवत के पंचम स्कंद के अंत में वर्णन है, यदि कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, शास्त्र को नहीं जानता है, और यमलोक में जाकर यदि यमराज को कहा कि प्रभु प्रभु मनुष्य जीवन प्राप्त तो हुआ परंतु शास्त्र नहीं पढ़ा मैं, तो यमराज उसे और दंड देते हैं और पीटते हैं, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला था, इतनी सुंदर बुद्धि मिली, शास्त्र को क्यों नहीं पढ़ा। ये मनुष्य जीवन में भगवान ने विशेष बुद्धि दी है शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, वेद को समझने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा साक्षात्कार के लिए भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर आंख है, कान है, तो इससे हमें शास्त्र को जानना चाहिए। जो शास्त्र का उल्लंघन करता है निश्चित वह नरक में जाता है। यमदूत कहते हैं शास्त्र का उल्लंघन किया है, जीवन भर पाप किया है, अतः इसे हम दंड पाणी यमराज जी के पास लेकर जाएंगे। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इस बात पर, परंतु आप इतना ही समझिए, इस संसार में, इस शहर में यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का नियम तोड़ता है तो तुरंत गवर्नमेंट उसे जेल में बंद कर देती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की बड़ी गवर्नमेंट है, भगवान गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट है, यदि कोई भगवान का नियम तोड़ता है तो निश्चित उसे यमराज की जेल में डालेंगे। तो इस अजामिल ने शास्त्र का उल्लंघन किया है, इसलिए हम इसे लेने के लिए आए। तो यहां पर व्यास देव जी इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम षष्ठ स्कंदे प्रथमो अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार अजामिल हाथ में है और यमदूतों ने कहा कि इसने पाप किया है इसलिए हम इसे लेकर जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी अपनी कमेंट्री देते हैं, श्रीपादरायणी उवाच एवं ते भगवत दूता यमदूता अभिभाषितम उपदार्यार्थ तान राजन प्रत्याहु नय कोविदा। इस प्रकार यमदूतों ने विष्णु दूतों को उत्तर दिया और यम दूतों ने जो जो भी कहा विष्णु दूतों ने उपधार्यार्थ ध्यान से सुना। वास्तव में कभी किसी को भी कुछ भी कहना हो उसके पहले ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक से सुना है वही ठीक से बोल सकता है। जितना इनकमिंग है उतना ही व्यक्ति आउटगोइंग कर सकता है। तो यहां पर यमदूत की सारी बातें उपधार्यार्थ ध्यान से विष्णु दूतों ने सुना और विष्णु दूत को सुखदेव गोस्वामी नय कोविदा कहते हैं। नयक का अर्थ होता है न्याय और विदह का अर्थ होता है जानना। भगवान के पार्षद विष्णु दूत न्याय को जानने में बहुत प्रवर थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में क्या बोलना चाहिए, ये भगवान की तरह ही प्रवर थे, भगवान की तरह ही इनमें गुण था। इसलिए इन्होंने देखा कि यमदूत में ज्ञान है परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए विष्णुदूत बोलना प्रारंभ किए। तो विष्णुदूता उचु, विष्णुदूत कहते हैं, सबसे पहले भगवान के पार्षद अफसोस करते हैं, कहते अहो कष्टम धर्म दृष्टाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्र दंडेशु पापेशु दंड ये गृहते वृथा। कहते हैं अरे कितने कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है कि धर्म राज की सभा में अधर्म प्रवेश कर दिया है। बहुत दुख की बात है धर्म राज की सभा में अधर्म प्रवेश कर दिया, क्योंकि आपके धर्म राज तो अधर्म में आ ही गए, आप भी अधर्म कर रहे हो, क्योंकि यत्र दंडेशु पापेशु जिसको दंड नहीं देना चाहिए ऐसे धर्मात्मा को तुम दंड देने के लिए लेकर जा रहे हो। यह अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा है, यह अजामिल बहुत अच्छा व्यक्ति है, तुम इसे दंड देने के लिए लेकर जा रहे हो, इसलिए निश्चित तुम लोग अधर्मी हो। यदि तुम धर्मराज के पार्षद हो तो बहुत कष्ट की बात है, अहो कष्टम बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि धर्मराज के शासन में अधर्म प्रवेश कर लिया, धर्मराज की सभा में अधर्म का प्रवेश। यदि धर्मराज की सभा में अधर्म आ गया तो यह संसार अधोगति की ओर चला जाएगा। प्रजानाम पितरो ये च शास्तार साधव समा यदि सत्ता येषु वैश्यम्यम कम्यांति शरणम प्रजा। धर्म का पालन करने वाले धर्म के पिता ही अधर्म में आ जाएंगे तो इस प्रजा का क्या होगा। यहां पर यमराज को प्रजानाम पितरो प्रजा के पिता कहा गया है। तुम्हारे मन में प्रश्न होगा यमराज को प्रजा के पिता क्यों कहे हैं, पिता तो प्रेम करते हैं और यमराज तो मारने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। परंतु वास्तव में यमराज जी किसी को दंडित करना नहीं चाहते हैं। यमराज जी के हृदय में यही भाव है कि संसार के सब लोग सुखी रहे, परंतु क्या करे जीव इतना कायर हो जाता है, इतना पापी हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उसे पवित्र करने के लिए यमराज मजबूर होकर लोगों को दंड देते हैं। यथा पितरह जैसे पिता, मान लीजिए किसी कोई अच्छा पिता है और उनके पुत्र को बहुत बड़ा फोड़ा या फुंसी हो गया, तो पिता उस पुत्र का भला चाहने के लिए उस पुत्र को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसका ड्रेसिंग करते हैं, काटते हैं, पुत्र को कुछ देर के लिए दुख होता है, दर्द होता है, परंतु बाद में वह ठीक हो जाता है। पिता के द्वारा थोड़ा दुख मिलता है परंतु उसमें पिताजी का भाव यह है कि आगे चलकर यह ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार यमराज जी दंड देते हैं परंतु दंड देने में यमराज जी का भाव है कि संसार के लोग दंड खाकर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो इस प्रकार यमराज जी के सभा में धर्म आ गया है और जब धर्म पालन करने वालों की सभा में अधर्म आ जाएगा तो इस संसार के लोग किसके शरण में जाएंगे। द्रौपदी का प्रसंग याद आ रहा है। कुरुवंश की सभा में महाभारत में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, एक से एक लोग वहां पर बैठे थे। द्रौपदी सबकी शरण में गई परंतु किसी ने शरण नहीं दिया, अपने पतियों के शरण में गई, पितामह भीष्म के शरण में गई, अंत में राजा धृतराष्ट्र के शरण में गई परंतु किसी ने शरण नहीं दी, अधर्म प्रवेश हो गया। तो कहते हैं यदि अधर्म धर्मराज की सभा में अधर्म आ गया तो संसार के लोग किसके शरण में जाएंगे, और धर्मराज ही यदि अधर्म करने लगे, इस संसार के बड़े बड़े लोग अधर्म करने लगे तो उनके पीछे चलने वाली जनता निश्चित अधर्म करेगी, क्योंकि यदा चरति श्रेष्ठस्त इतस्तत दीहते सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्योंकि संसार में बड़े बड़े लोग जो कार्य करते हैं, छोटे छोटे लोग उस बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं। तो बड़े लोग ही यदि अधर्म करेंगे तो बेचारे छोटे लोगों का क्या होगा। तो बड़े लोगों को चाहिए, आपके स्वामी को चाहिए कि धर्म करे, अधर्म न करे। ये सत्य बात है। बड़े लोग जो कार्य करते हैं छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने जब जन्म लिया तभी संसार में बहुत विषम स्थिति थी। सब लोग इतना पशुवध करते थे, लोगों की हिंसा करते थे। भगवान बुद्ध ने सोचा कि सबके घर घर जाकर उपदेश देना मुश्किल है, इसलिए बुद्ध ने केवल एक व्यक्ति को भक्त बनाया, पूरा संसार भक्त बन गया। उस वक्त इस भूमंडल के राजा अशोक सम्राट थे, सम्राट अशोक, जिसका चक्र आज भी भारत की नोटों में है। भगवान बुद्ध ने राजा अशोक को भक्त बनाया और सम्राट अशोक जब भक्त बने तो संसार की सारी प्रजा उसके फॉलोअर हो गई। बड़े लोग जो कार्य करते हैं निश्चित छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं। गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यद्यपि मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है परंतु यदि मैं कर्म न करूं तो संसार के लोग मेरा अनुकरण करते हुए कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए भगवान भी, जैसे कृष्ण भी बहुत ऐसे नैतिक कर्म करते हैं, गुरुकुल में जाना, शिक्षा ग्रहण करना। कृष्ण हो या भगवान राम हो या चैतन्य महाप्रभु हो, सब लोग गुरु धारण करते हैं और गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि को गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी को, भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र को गुरु बनाया। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को यह सब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और गुरु बनाकर उनसे शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जाके वेद श्वास सुतिचारी, जिसके श्वास से जिसे जिसके सांस से वेद प्रकट होते हैं, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, ऐसे प्रभु ऐसे भगवान पढ़ने जाए ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। जिसके सांस से वेद निकलते हैं वो भगवान को क्या पढ़ने की आवश्यकता है, परंतु भगवान हमारे लिए, संसार के लोग उनका अनुकरण करें इसलिए भगवान कर्म करते हैं। तो यदा चरति श्रेष्ठस्त, बड़े बड़े लोग जो प्रमाण साबित करते हैं, जो कार्य करते हैं, छोटे छोटे लोग उनका अनुकरण करते हैं, और इस संसार के सारी प्रजा, जो नेता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके गोद में सिर रखकर सोती है। यस्यांके सिर आधाय लोक स्वपिति निवृत, स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु। भगवान के पार्षद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। इस संसार में प्रायः लोग धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानते हैं। हम क्या कर्म करते हैं उसका क्या फल मिलेगा, हम क्या पुण्य और पाप करते हैं उनका कितना कितना फल मिलेगा, यह कोई नहीं जानता है। यथा पशु, दृष्टांत देते हैं जैसे पशु। पशु कार्य करते हैं परंतु कार्य के रिजल्ट के बारे में नहीं जानते हैं कि यह करने के बाद क्या होगा। ठीक उसी प्रकार संसार के लोग कर्म करते हैं परंतु उनके फल से बिल्कुल अवगत है। और आप अच्छे कर्म करने वालों को भी नरक में लेकर जाओ, यह तो बहुत बड़ा धोखा है, यह तो बहुत गलत चीज है। क्योंकि संसार की सारी प्रजा आपके गोद में सिर रखकर सो रही है। इस संसार में प्रायः जो भी प्रजा है, प्रायः संसार के लोग बड़े लोगों की गोद में सिर रखकर सोते हैं। दृष्टांत देते हैं, जैसे एक बच्चा अपना सिर अपनी मां के गोद में रखकर सो जाता है। तो कहते हैं बच्चा अपना सिर अपनी मां के गोद में रखकर सो जाता है, परंतु सोए हुए बच्चे को मां सिर काट दे तो बच्चा का पूरा विश्वास होता है मां के ऊपर। ठीक उसी प्रकार इस संसार में सबको आपके ऊपर विश्वास है, और आप ही इस प्रकार के से सबके विश्वास को तोड़ दो, यह ठीक नहीं है। जैसे इस संसार में प्राय हम लोग ट्रेन से जाते हैं आते हैं, हजारों हजारों लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करते हैं, सो जाते हैं, और केवल ट्रेन को चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। इसका अर्थ हुआ कि ट्रेन में बैठने वाले हजारों लोग एक ड्राइवर की गोद में सिर रखकर सोए हुए हैं। हजारों लोग ड्राइवर की गोद में सिर रखकर सोए हुए हैं। यदि वह ड्राइवर अधर्म कर दे, यदि वह ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे, तो हजारों लोग एक झटके में मर सकते हैं। विष्णु दूतों का भाव यह है कि यदि आप ही अधर्म करने लगे तो संसार के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक नहीं। तो जैसे मां के गोद में बच्चा सोता है, ट्रेन के चलाने वाले ड्राइवर की गोद में यात्री सोते हैं, वैसे ही सरकार की गोद में प्रजा सोती है। प्रजा को प्राय विश्वास होता है कि सरकार अपना कारोबार ठीक से चलाएगी, परंतु यदि सरकार ही विपरीत चलने लगी तो प्रजा दुखी होगी। ठीक उसी प्रकार शिष्य संपूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु के गोद में सिर रखकर सो जाता है। यदि गुरु ठीक नहीं रहे तो शिष्य का पतन निश्चित है। तो इस संसार के प्रायः सभी लोग आपकी गोद में सिर रखकर सोए हैं, और आप ही अधर्म करोगे तो संसार के लोगों का क्या होगा। प्रभुपाद जी इसके परपट में बहुत सुंदर लिखे हैं, प्रायः इस संसार के लोग पशु पालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, और पशुओं को पालकर उसे बहुत भोजन कराते हैं, भोजन खिलाते हैं, और खिला खिलाकर उस पशुओं को तगड़ा बना देते हैं। जब पशु बहुत मोटे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, मांस बढ़ जाता है, तो पशु का पालन करने वाला ही उस पशु को मार देता है, काट देता है, और काट कर उसे खा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस पशु ने जीवन में एक बार भी नहीं सोचा होगा कि मेरा पालन करने वाला मुझे मार डालेगा। कसाई खाने में जितने बकरे हैं, एक बार भी उनके मन में यह विचार नहीं आया होगा कि ये 5 मिनट के बाद मुझे मारने वाला है। तात्पर्य यह है कि सब लोग आपके शरण में, आपके गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, और आप ही यदि अधर्म करोगे तो ये ठीक नहीं है। सकतम न्यर्पिनात्मानम कृत मैत्रम चेतनम विस्त्रम्ब भणियो भूतानाम सग्रिणो दोग्धुमर्हति। इस संसार के लीडर ही यदि गलती करने लगे तो इस संसार के जो छोटे लोग हैं बेचारे दुखी हो जाएंगे। शास्त्र में बहुत सुंदर उपदेश दिए गए हैं। इस संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं, विशेषितो, विशेष करके विशेषितो धर्मशीलो राजा लोग पतिर गुरु, विशेष करके इस संसार में जो राजा है उसे धर्म का पालन करना चाहिए। लोकपति, इस संसार में लोगों के जो पति है, लोगों के स्वामी है, उसे धर्म का पालन करना चाहिए, उसे कभी अधर्म नहीं करना चाहिए। और गुरु, गुरु को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यदि ये लोग अपने धर्म का पालन नहीं किए तो संसार अधोगति की ओर जाएगा। और प्रायः हम देख रहे हैं कि आज संसार अधोगति की ओर जा रहा है, इसका एक ही कारण है कि राजा, लोकपति और गुरु सब लोग बिगड़ेल हो गए। संसार में प्रायः जो बोगस गुरु होते हैं और आज के नेता इत्यादि सब लोग अधर्म में हैं। नहीं तो देखिए परीक्षित महाराज का राज्य, राम राज्य, एक व्यक्ति भी दुखी नहीं था। प्रजा को सुखी रखना यह संपूर्ण राजा के हाथ में है, गुरु के हाथ में है। यदि प्रजा दुखी है इसका अर्थ है कि राजा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो राम राज्य में, परीक्षित राज्य में दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि राजा अच्छे होते थे, लोकपति अच्छे होते थे, लीडर अच्छे होते थे। परंतु आज ये बड़े बड़े लोग ही बिगड़ने लगे हैं, इसलिए प्रजा भी बिगड़ रही है। तो इस प्रकार से विष्णु दूतों ने कहा कि आपके धर्मराज की सभा में अधर्म आ चुका है। तब यमदूत कहते हैं कि इस प्रकार हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप नहीं जानते हो ये अजामिल बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा अधर्मी है। यमदूत कहते हैं कि आप अजामिल का पक्ष क्यों ले रहे हो? ठीक है, धर्मराज की सभा में कुछ भी हुआ हो, अधर्म हो चाहे धर्म हो, परंतु ये तो सामने दिख रहा है कि अजामिल पाप किया था, नशा किया था, चोरी किया था, मांसाहार किया था, पर स्त्री संग किया था और किसी को किडनैप किया था, किसी का धन लूट लिया था। ये सब कुछ आपके सामने है, इतना इतना पाप अजामिल ने किया, जीवन भर पाप किया, फिर भी आप अजामिल का पक्ष क्यों ले रहे हो? ये पापी है इसलिए हम इसे लेकर जा रहे हैं। तब विष्णुदूत कहते हैं कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हम सामपि यत व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हर। अजामिल को पापी मत कहना, ये अजामिल तो उस दिन पवित्र हो गया जिस दिन उसने पहली बार भगवान नारायण का नाम लिया, जिस दिन इस अजामिल ने पहली बार विवश होकर भगवान का नाम लिया उस दिन यह पवित्र हो गया। और एक जन्म के लिए नहीं, अजामिल ने जब भगवान का एक बार नाम लिया तो जन्म कोटि यम सामपि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसके जलकर भस्म हो गए। इसके परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अतशे नाप यन्नामनी कीर्तिते सर्व पातके पुमान सक्तो विमुचेत सिंह स्तत्रे मृगे रिव। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है, यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उनके जीवन के पाप वैसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना सुनकर छोटे मोटे प्राणी भाग जाते हैं। जंगल में जंगल का राजा जब सिंह निकलता है तो उनकी गंध से, उनके दहाड़ने से छोटे मोटे प्राणी वहां से भाग जाते हैं, हाईवे बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम जो लेता है, भगवान का नाम लेने से हृदय में जितने भी पाप हैं ये सारे पाप भाग जाते हैं। यदि इस पे और विचार किया जाए तो छोटे मोटे प्राणियों को भगाने के लिए सिंह की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे प्राणी को भगाने के लिए सिंह की गंध केवल आ जाए, पता केवल चल जाए कि सिंह आ रहा है, छोटे मोटे प्राणी वहां से भाग जाते हैं। वैसे पाप को नष्ट करने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं है, नामाभास मात्र से पाप नष्ट हो सकता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और एक आचार्य अपने टीका में कहते हैं, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावद कर्तुन शक्तोति पातकम पातकी जन। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम यदि कोई ले ले और भगवान के एक बार नाम लेने से इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है कि एक व्यक्ति में उतना पाप करने की शक्ति नहीं है। व्यक्ति हजारों जन्म तक पाप करता रहे परंतु एक बार कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। और हमारे श्रीधर स्वामी तो यहां तक कहते हैं, सकृत उच्चरात सकृत उच्चारितम येन हरि इति अक्षरम द्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम पति। भगवान का नाम लेने से पाप दूर हो जाता है, ये तो सेकेंडरी है, ये तो बोनस है। क्योंकि भक्त लोग पाप काटने के लिए भगवान का नाम नहीं लेते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, यदि कोई भगवान का नाम ले लिया तो पाप तो कटेंगे ही, नरक से तो बचेगा, परंतु भगवान का नाम लेने वाला भगवान के धाम की ओर चलने लगता है। भगवान का धाम बहुत करीब हो जाता है भगवान का नाम लेने वाले। तो विष्णुदूत कहते हैं कि जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया तब वह सभी पापों से मुक्त हो गया। अब ये पापी नहीं है, अब ये शुद्ध है। एतेनेव यदोनस्य कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायति जगाद चतुरक्षर। जब इसने नारायण नाम लिया, भगवान का नाम लिया, तब ये पूर्ण पापों से मुक्त हो गया। वास्तव में विष्णुदूत सनातन धर्म का सार बता रहे हैं। सनातन धर्म का सार बताते हुए यह श्लोक कह रहे हैं कि वास्तव में जीव का परम लक्ष्य, जीव का परम कार्य है भगवान का नाम लेना। सवे पुंसा परो धर्म, इस संसार में जीव के बहुत बहुत कर्तव्य हैं। जब जीव भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में या पंच महाभूत के देह में बंध जाता है तो जन्म से ही सभी के प्रति उनके कर्तव्य होते हैं। माता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, पत्नी के प्रति कर्तव्य होते हैं, पुत्र के प्रति, सभी के प्रति कर्तव्य होते हैं। सभी के कर्तव्य धर्म का पालन करना होता है, परंतु सभी कर्तव्यों से श्रेष्ठ कर्तव्य यदि कोई है तो वो है आत्मा का कर्तव्य। ये जितने भी माता की सेवा, पिता की सेवा, पुत्र की, पत्नी की, ये जितने की भी सेवा है, ये सब संबंध शरीर के संबंध है, ये सब शरीर के कर्तव्य है, परंतु वास्तव में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए आत्मा का हमारा परम धर्म क्या है? सवे पुंसा परोर धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज, भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, यह है हमारा परम धर्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब इस प्रकार से कहा कि एक बार ना भगवान का नाम लेने से ये हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया, तब यमदूत कहते हैं, यमदूत कहते हैं कि शास्त्रों में पाप से मुक्त होने के लिए कई सारे उपाय बताए हैं। शास्त्र में लिखा गया है, मनु संहिता इत्यादि अलग अलग ग्रंथों में, कि यदि किसी को पापों से मुक्त होना हो तो द्वादश व्रत करना चाहिए, और इस द्वादश व्रत में जीवन भर तपस्या करना, जीवन भर दान करना, व्रत का पालन करना, उपवास रखना। और यह भी लिखा है कि यह सब जीवन भर करने से भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त नहीं हो पाएगा। यमदूत कहते हैं कि जीवन भर तपस्या करने से, दान करने से, पुण्य करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त नहीं हो सकता है। और आप कह रहे हो कि एक बार नाम लेने से करोड़ों जन्मों से पाप मुक्त हो गया, ये कैसे हो सकता है? तब इसका उत्तर देते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि स्तेन सुरापो मित्र दुख ब्रह्मा हा गुरु तल्पग स्त्री राज पितृ गोहंता ये चपात की नोक है। यदि कोई व्यक्ति चोरी किया हो, यदि किसी ने शराब पिया हो, यदि किसी ने अपने मित्र को धोखा दिया हो, यदि किसी ने ब्रह्म हत्या भी क्यों न किया हो, यदि कोई अपना गुरु का भी अपराध किया हो, यदि किसी ने स्त्री राज स्त्री का राजा और पितृ को मारा हुआ हो, परंतु वह भगवान का नाम ले लेता है तो यह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन सभी प्रकार के छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आ जाओगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष इष्यामि मा सुच, डरो मत। और सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा, मेरा धाम प्रदान करूंगा। परंतु मेरे शरणों में आकर मेरी शरण ग्रहण करके पाप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आचार्य गण कहते हैं, वर्तमानम यत पापम यत भूतम यत भविष्यति। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में पाप कर रहा हो और भूतकाल में बहुत पाप किया हो और भविष्य में भी बहुत पाप करने वाला हो, तत् सर्व निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनाम, यदि वह गोविंद का भगवान का नाम ले लेता है तो भूत भविष्य और वर्तमान ये सभी पाप उस भगवान श्री गोविंद नाम रूपी दावाग्नि में जल जाते हैं। नाम में इतनी शक्ति है। सर्वेषामप्य धवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु यतस्तद् विषयामति। नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उनकी मति भगवान में लगती है, बुद्धि भगवान में लगती है। और भगवान का नाम लिए बिना व्यक्ति जितना भी उपाय करता है, तपस्या, दान, हवन, यज्ञ इत्यादि, उससे मति भगवान में नहीं लगती। तो इसके दो अर्थ हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसकी मति शुद्ध होती है, मन और बुद्धि शुद्ध होता है। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो भगवान की मति उस भगवान के भक्त में लग जाती है। हम भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को याद करने वाले को भगवान याद करते हैं, भगवान की मति उसमें लगती है। और भगवान देखते रहते हैं मेरा नाम लेने वाला संसार में दुखी तो नहीं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसीलिए जो भगवान का नाम लेता है भगवान उसकी ओर देखते रहते हैं निरंतर। इसीलिए अजामिल म्रियमाणस्य म्रियमाण अवस्था में अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो तुरंत भगवान ने विष्णु दूतों को भेज दिया। ठीक उसी प्रकार जो जो लोग भगवान का नाम लेते हैं निश्चित भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे गुरुवंश की सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था और द्रौपदी ने जब कहा, हे कृष्ण द्वारकावासी, भगवान का नाम लेते ही तुरंत भगवान प्रकट हो, कथा सुननी है। महाभारत में कथा है कि महाभारत में कौरव और पांडव बहुत बड़ा जुआ खेले और शकुनि के छल से पांडवों को दुर्योधन ने हरा दिया। पांडव सब कुछ हार गए, अंत में युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उस दाव में हार गए। तो उस वक्त दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि दुशासन, अब द्रौपदी हमारी हो चुकी है, द्रौपदी को और इस भरी सभा में लेकर आओ, भरी सभा में लाओ और भरी सभा में उसे नग्न करो। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए द्रौपदी के कक्ष में गया। महाभारत में वर्णन है उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल खुले थे। द्रौपदी ने ना कहा परंतु दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए उस कुरुवंश की सभा में लाया। और गुरुवंश की सभा में लाकर दुर्योधन अपनी जांग ठोककर कह रहा था, इस द्रौपदी को मेरी जांग पर बिठाओ। सभी पांडवों के सिर नीचे हो गए। द्रौपदी सबके शरण में गई परंतु किसी ने शरण नहीं दिया। अपने पतिदेव के शरण में गई परंतु दुशासन के इस कार्य को रोकने वाला उस सभा में कोई नहीं था। महाभारत में वर्णन है जिस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त करने का प्रयास किया गया उस सभा में 40,000 कुर्सी लगी हुई थी। 40,000 लोगों के बीच में यह कार्य हो रहा था। अपने पतियों के शरण में गई, वे भी सिर झुका दिए। पितामह भीष्म के शरण में गई, वे भी कुछ नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र के शरण में गई परंतु पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं कर पाए। और दुशासन उस द्रौपदी की साड़ी को खींचता गया। द्रौपदी ने को जब किसी का सहारा नहीं मिला तब अपनी शक्ति इस्तेमाल की, अपने हाथों से दुशासन को रोकने का प्रयास, परंतु बेचारी द्रौपदी दुशासन के सामने क्या है, नहीं रोक सकी। तब द्रौपदी को व्यास देव की कही हुई बात याद आई। व्यास देव ने द्रौपदी को कहा था कि जीवन में जब दुख आए, जीवन में जब किसी का साथ न मिले, तब कृष्ण को याद करना, कृष्ण का नाम लेना। उस समय भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त करने का प्रयास, द्रौपदी को भगवान कृष्ण की याद आई और भरी सभा में द्रौपदी ने कहा कि तुम लोग हस्तिनापुर में रहने वाले लोग लाज और शर्म को क्या जानो, लाज और शर्म और मर्यादा पानी के बीच में रहने वाला मेरा भाई जानता है। तुरंत द्रौपदी, हे कृष्ण द्वारका वासी पाही पाही जगतपते, जैसे ही द्रौपदी के मुख से भगवान का नाम निकला उसी समय भगवान द्वारका में थे। भगवान के अंग फड़कने लगे, रुक्मणी चामर डुला रही थी, सत्यवामा पानी दे रही थी, सबको छोड़कर भगवान जंप लगाकर वहां से निकले। गरुड़ जी ने कहा प्रभु आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा गरुड़ जी तुम्हारी गति आज मंद है। इतने तेज गति से अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए गए, भगवान को लगा कि मेरी गति भी धीमी है, इसलिए भगवान ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन है वस्त्र आगे जा रहा है, भगवान पीछे और गरुड़ जी उसके पीछे, और यहां पर द्रौपदी की लाज रह गई। दुशासन साड़ी को खींचता गया खींचता गया, दुर्योधन जांग ठोकता रह गया कि नग्न करो द्रौपदी को, परंतु 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन के मुख से फेण निकल गए, परंतु वह साड़ी समाप्त नहीं हुई। कहने लगा भैया ये साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, ये नारी है कि साड़ी बनाने की फैक्ट्री है, साड़ी समाप्त ही नहीं हो रही। अंत में गिर गया और द्रौपदी की लाज रह गई। परंतु जब द्रौपदी की विजय हुई, भक्त की विजय हुई, भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर द्रौपदी ने कृष्ण को इतना ही पूछा, थोड़ी क्रोध में थी, जहां पर प्रेम होता है वहां मान और क्रोध होता है, कहा भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतने देर से क्यों आए, पहले ही आकर मेरी रक्षा कर लिए होते। तब कृष्ण ने इतना ही कहा बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था रक्षा करने के लिए, परंतु तुमने कहा कि हे कृष्ण द्वारका वासी, अब मैं मेरी भक्त की प्रतिज्ञा को तो कभी तोड़ता नहीं हूं, इसलिए मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से आना पड़ा, इसलिए देरी हो, नहीं तो भक्त की रक्षा करने में मैं देरी नहीं करता हूं। तुरंत भक्तों की रक्षा, जो भगवान का नाम लेते हैं तुरंत भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र जब भगवान को बुलाए, भगवान श्री हरि नंगे पांव आए। जो जो भगवान का नाम लेता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान की मति यत्तद् विषयां मति। विष्णुदूत कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेते हैं भगवान की मति उनके भक्तों में रहती है। और गीता में तो कहते हैं मई तेषु चाप्यहम्, अर्जुन जो मेरा भजन करता है मैं उनके हृदय में बैठता हूं। विष्णुदूत आगे कहते हैं न निष्कृते रुदिते ब्रह्मवादी भी तथा विशुद्ध्या भगवान व्रतादि भी यथा हरेर नाम पदेर उदाहरिते तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्। इस संसार में बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने प्रायश्चित करने के लिए, पापों को काटने के लिए बहुत बहुत व्रत बताए हैं, परंतु यह जितने भी व्रत शास्त्र में ऋषि मुनियों ने बताए हैं उससे पाप संपूर्ण नष्ट नहीं होता है, परंतु यदि कोई भगवान का नाम ले ले तो उसे पाप जड़ से जलकर भस्म हो जाता है। और पाप तो जलता ही है, साथ साथ तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम्, यदि कोई भगवान का नाम निरंतर लेते रहे तो भगवान श्री कृष्ण की गुण रूप लीला उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। भगवान का नाम लेने से भगवान के गुण रूप और लीला हृदय में स्फुरित होती है, निरंतर नाम लेते रहने से। इसलिए आचार्य गण अपने टीकाओं में कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंग्रेण रचनाम सरोरुहम घृणोति स समलग कृष्ण सलिलम यथा। भगवान कृष्ण कान के द्वारा हृदय में आते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो वह शब्द भगवान शब्द ब्रह्म शब्द के द्वारा कान से हृदय में उतरते हैं। और भगवान तो पवित्रम परमम भवान। इस संसार में सब लोग अपवित्र हैं, सबका हृदय अपवित्र है और हृदय में बहुत बहुत कलमश है। तो सबसे पहले हमें हृदय को शुद्ध करना होगा और हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम लेना होगा। और जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, कान के द्वारा प्रविष्ट कर्ण रंग्रेण कान के छिद्र से भगवान हृदय में आते हैं। और जैसे ही भगवान हृदय में आ जाते हैं तो जितना कलमश हमारे हृदय में है सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। अर्जुन ने गीता में कहा है कि प्रभु आप परम पवित्र हो, पवित्रम परमम भवान। तो भगवान परम पवित्र है, भगवान कर्ण के मार्ग से हृदय में आते हैं और हृदय से जब हृदय पवित्र हो जाता है तो पवित्र हृदय में भगवान के गुण रूप और लीला स्फुरित होने लगती है। नैकांतिकम तद्विकृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निहार मद्भीप्सिताम हरे गुणानुवाद खलु सत्व भावना। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। और जितने जितने शुद्ध होने के मार्ग हैं, जितने मत हैं, जितने पथ हैं और जितने अलग अलग धर्म हैं, ये सभी चीजों में व्यक्ति प्रायश्चित करके साधन करके पूर्ण शुद्ध नहीं होता है, उनके मन में कुछ ना कुछ दोष रह ही जाता है। परंतु भगवान का नाम एक ऐसी वस्तु है, भगवान का नाम लेने से पाप तो नष्ट होता है साथ ही साथ मन भी पवित्र हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने इस संसार में सबसे बड़ी तपस्या करने वाला हिरण्यकश्यपु है, 36,400 वर्ष तक तपस्या किया था। और तपस्या भी साधारण तपस्या नहीं, भागवत के सप्तम स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णन है, ऊर्ध्व बाहु नभो दुष्टि पादांगुष्ठा शितावनी, अपने केवल अंगूठे के बल पर खड़े रहकर ऊर्ध्व बाहु दोनों हाथ ऊपर करके नभो दृष्टि अपनी दृष्टि आकाश की ओर करते हुए 36,400 वर्ष तक खड़ा रहा भूखा प्यासा। हमारे इतिहास में आज तक इतनी तपस्या कोई नहीं किया, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु का मन शुद्ध नहीं हुआ। क्योंकि वर्णन है कि तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से वर लेकर सभी शास्त्रों का उल्लंघन करने लगा। और शास्त्र को पढ़ पढ़कर, शास्त्र को पढ़ता था परंतु इसलिए पढ़ता था कि ताकि इसका उल्लंघन करे। शास्त्र में लिखा था ब्राह्मणों को दान देना चाहिए परंतु हिरण्यकश्यपु ब्राह्मणों को मारता था। हिरण्यकश्यपु को जब वर प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उसने हिरण्यकश्यपु ने नियम बनाया, इस संसार में जो भजन करने वाले हैं, जो संत हैं, साधु हैं, उसको आज से भोजन पानी बंद, और जो लोग पाप करते हैं उसे रसगुल्ला गुलाब जामुन फिश दिया जाए और अच्छे अच्छे रहने के लिए बंगले दिया जाए। भागवत में यह वर्णन है। शास्त्र का उल्लंघन, हिरण्यकश्यपु इतनी तपस्या किया फिर भी मन शुद्ध नहीं हुआ। रावण देखो कितना यज्ञ किया, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए रावण ऐसा यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ किया, अपने सिर को काट काट कर उस यज्ञ में डालने लगा, एक एक करके 9 सिर डाल दिए, 10वां सिर डालने के लिए यज्ञ कर रहा था तब जाकर शिवजी प्रसन्न हुए। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी रावण का मन पवित्र नहीं हुआ। परंतु भगवान का नाम यदि कोई लेता है तो वह पाप से तो बचता ही है परंतु साथ साथ उसका मन भी पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होता है। अथेन माप नयत कृता शेषाद घनिष्कृतम यदसो भगवन नाम म्रिय मान समग्रहित। अथ इसलिए हे यमदूतो, आप इसे मत ले जाओ, इसने भगवान का नाम लिया है, ये सभी पापों से मुक्त है, इसलिए आप इसे मत लेकर जाओ। और इसने यदसो भगवन नाम, और इसके जीवन का सबसे अच्छा कार्य इसने क्या किया है पता है? भगवन मृिय मान समग्रित, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया। और सब जगह लिया होता तो ठीक है, और नाम लेकर लोग पाप करते रहते हैं, परंतु अंतिम प्राण जब इसका निकला तो मरते समय मृिय मान समग्रित, क्योंकि मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए नरक में तो जाएगा ही नहीं। क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो वह भगवान के पास जाता है, और अंत काल में यदि कोई भगवान का स्मरण करता है, भगवान ने स्मरण कहा क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने यदि गीता में कहा होता कि अंत काल में कोई मेरा नाम लेता है वही मेरे पास आएगा, तो प्राय देखा गया है कि लोगों के जीवन का जब अंत काल आता है तो उनकी इंद्रिया काम करना बंद हो जाती है, हाथ चलना बंद कर देते हैं, पग नहीं चलते हैं, आंखें भी बंद हो जाती हैं, बोलना भी बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या बोलेगा बेचारा? इसलिए जो भी बोलना है अभी बोल लेना चाहिए। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं कि अंत समय में मौका बोलने का नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नाम लेना है अभी से ले लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहते क्षण भंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली। आज शाम को रात को घर पे जाकर हम सो जाएंगे तो कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे कोई भरोसा नहीं। गोविंदा जी कहते हैं कमल दल जल जीवन तल मल, जैसे कमल की पंखड़ी के ऊपर पानी की बूंद स्थित होती है, कब हवा आ जाए और वो पानी की बूंद गिर जाए, वैसे ही कब काल आ जाए और जीव को मार डाले कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली। मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली न जिली। रटले अरि जीव हाथ कृष्ण को नाम अंत समय पे हिली न हिली। हे जीवा कृष्ण का नाम ले ले, अंत समय में कोई भरोसा नहीं है हिलेगी या नहीं हिलेगी। और अंत समय में यदि हिल गई तो निश्चित भगवान का धाम होगा, परंतु आचार्य कहते हैं जीवन भर हिलाओगे ना तो अंत में हिलेगी। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि अजामिल ने अंत में भगवान का नाम लिया और हम अभी से भोग करेंगे, ऐश्वर्य में रहेंगे और अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे और चले जाएंगे। कुछ लोग तो प्लान भी बना लिए होंगे कि चार दिन से सुन रहे हैं कि इतना पापी था, हम इतने पापी तो नहीं है, और अंत समय में यदि हम नहीं ले पाए तो कहेंगे तो चार पांच लोगों को खड़े रखेंगे और कहेंगे मुझे बुलाना। क्या बताऊं, कथा आई है तो सुना ही देता हूं। एक बार एक सेठ ने अजामिल की कथा सुनी और सुना कि जीवन भर पाप किया परंतु अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से था, और अंत समय में पुत्र का नाम लिया भगवान का नाम से था, इसलिए भगवान के धाम में चला गया। तो इसलिए प्रभु आप आज से महामंत्र का जप करो, भक्ति करो। सेठ ने कहा अब मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया है, प्रभु जी आप जाओ। बेचारे इस्कॉन के प्रभु जी चले गए, और ये सेठ के चार लड़के थे और चारों लड़के के चिंटू मिंटू पिंटू नाम था। चारों को कहा कि आज से मैं तुम्हारा नाम बदल रहा हूं, आज से चारों का नाम बदल दिया, और चारों का नाम संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रख दिया। अपने चारों पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखा और कहा आज से आपके यह नाम। और सेठ जीवन भर पाप करते रहा, अंतिम समय जब इसका आया और जब मरण पथारी पर सो रहा था, ये चारों लोग तो अपनी अपनी दुकानों में थे, और गांव की घटना है, गांव में ये सो रहा था तो अंतिम सांस जब गिन रहा था तो सेठ ने कहा कि लड़कों को बुलाओ। शंकरशरण वासुदेव अनिरुद्ध और प्रद्युम्न चारों उस सेठ के पास आए, बेचारा मरणासन था, और आकर सेठ ने देखा कि चारों बच्चे खड़े हैं, परंतु चारों बच्चे के ऊपर नजर डाले तो चारों बच्चे के बीच से पीछे एक दृश्य सेठ ने देख लिया। और दृश्य क्या था, एक उनके घर में एक गाय थी और गाय झाड़ू को चबा रही थी। तो कहा, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, तुम कितने मूर्ख हो, मेरे जीते जी वो गाय झाड़ू चबा रही है, मर जाऊंगा तो क्या होगा तुम्हारा। आसक्ति उसकी गाय उस झाड़ू में रह गई, क्या पता दूसरे जन्म में उसी झाड़ू का कीड़ा बना होगा। अंत मति सो गति, अंत समय में जो मति होती है ऐसी गति होती है। एक बार एक ब्राह्मण किसी के घर पर मिलने के लिए गए, गांव की बात है, बेचर भाई के वहां पर गए, सत्य घटना है, गुजरात के ही थे। एक ब्राह्मण बेचर भाई के घर पर गए और जाकर दो तीन दिन रहे और बेचर भाई को कहे कि मुझे द्वारका जाना है और दो तीन दिन द्वारका रुकना है, मैं दो तीन दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास ये एक थैली है और थैली में और कुछ नहीं, पुस्तक है, तो आप रखो, द्वारका से जब मैं वापस आऊंगा तो आपके घर से मैं यह चीज लेकर चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण गए द्वारका, यहां पर बेचर भाई वह थैली किसी अलमारी में रख दी। ब्राह्मण आए, तीन चार पांच दिन हो गए परंतु ब्राह्मण वापस नहीं आए। तो बेचर भाई को टेंशन आ गया कि ये तो कहकर गया था कि मैं दो तीन दिन में आ जाऊंगा, आज के लोग है कलयुग के लोग, उसको शक होता है बम तो नहीं है कहां कहीं। तो वह थैली को निकाला अलमारी से और खोलकर देखा तो भगवत गीता थी। कहा ठीक है, चलो भगवत गीता है, अब अलमारी में नहीं मंदिर के ऊपर रखो। परंतु भगवत गीता भी बहुत अच्छी तरह से कवर, ब्राउन कलर का कवर चढ़ाया हुआ था, तो रख दी। चार पांच दस पंद्रह दिन बीत गए लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं आए। ब्राह्मण नहीं आए तो एक दिन वह बेचर भाई की नजर उस भगवत गीता के ऊपर गई और भगवत गीता को लिया तो उसके ऊपर एक सांप का बच्चा बैठा हुआ था। तो उसने सांप के बच्चे को भगा दिया और भगवत गीता को दूसरी जगह पर रख दी। दो दिन के बाद देखा तो वो सांप का बच्चा दूसरी जगह पर उसी भगवत गीता के ऊपर आकर बैठ गया। ऐसे बेचर भाई ने तीन चार जगह पर उस ग्रंथ को यहां से वहां किया, वहां से वहां किया, लेकिन सांप का बच्चा जहां पर ग्रंथ रखते वहां पर ही आकर बैठ जाता। अंत में फिर कई दिनों के बाद बेचर भाई द्वारका गए और द्वारका जाकर वास्तविक घटना का पता चला कि उस भगवत गीता के उस पूठे में ब्राह्मण ने 10 रुपया रखे थे। और ब्राह्मण द्वारका चला गया और द्वारका जाकर उसे हार्ट अटैक आया तो उसके मन में यह था कि मैं उस बेचर भाई के घर में 10 रुपया भूल गया हूं, बस 10 रुपया याद आया, उसकी मृत्यु आ गई और मृत्यु के बाद तुरंत वह उसी गीता के ऊपर सांप बना। सत्य घटना है। इसलिए अंत मति सो गति, अंत में यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवत धाम को प्राप्त होता है और अंत में यदि ठीक नहीं है मति तो जैसी मति वैसा देह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विष्णुदूत बहुत सुंदर हरिनाम की महिमा बता रहे थे। यमदूत ने कहा बस 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 बहुत हो गया, हरिनाम की महिमा तो हम समझ गए, लेकिन आप लोग जिस अजामिल का पक्ष ले रहे हो, ये अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया है, ये सत्य है, भगवान के नाम की बहुत महिमा है, सब ठीक है, परंतु ये अजामिल ने भगवान का नाम नहीं, उसके पुत्र का नाम लिया है। तब विष्णुदूत कहते हैं तो उसमें क्या हो गया, साकेत्यम परिहास्यम वा सोगम हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा धरम विदु। यदि कोई अपने पुत्र के बहाने या साकेत्यम संकेत करके, मान लीजिए कोई कहे कि देखो देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, इतना भी यदि कोई कह दे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, इसे संकेत कहते हैं। परिहास्यम वा, यदि कोई हरे कृष्ण वालों की हंसी मजाक में भी अरे ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, मुंडन करा के घूमते रहते हैं, मजाक करते हुए भी, गाली देते हुए भी, अरे ये साला रामू कुछ काम ही नहीं करता है, ऐसे भी यदि किसी ने बोल दिया तो वह सब पाप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि राम तो बोला हेलन में वह अवहेलना करके यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो निश्चित विद्वान लोग कहते हैं, विदु बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि वे सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, पतित स्खलितो भग्न संदश्च तप्त आहत हरिर इति अवशेनाह पुत्र नाम हति यातना। कोई गिरते समय, मान लीजिए रास्ते में चल रहा है और गिर गया, गिरते समय भगवान का नाम लिया, स्खलितो फिसलते समय, भग्न कहीं 25 माल की बिल्डिंग से गिर गया या आत्महत्या की, लेकिन गिरते समय भी यदि अंत में भगवान का नाम ले लिया तो निश्चित वह यमदूत से और यमराज से बच जाएगा। गुरुनाम च लघुनाम च गुरु नीच लघु नीच प्रायश्चितानि पापा नाम ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। ये छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित और बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित, ये सब जो विधि बताई गई है ये विधि प्रायश्चित के लिए है। यदि छोटा पाप किया है तो छोटी तपस्या, बड़ा पाप किया है तो बड़ी तपस्या, ये सब अलग अलग विधियों के अलग अलग साधनों के लिए है, भगवान के नाम में ऐसा नहीं है। यदि कोई भगवान का एक बार नाम लेता है तो छोटा पाप हो या बड़ा पाप ये सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा पाप है तो बड़ा नाम लेना होगा, छोटा पाप है तो छोटा नाम लेना होगा। भगवान का एक नाम काफी है, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो उसे नष्ट करने के लिए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी दृष्टांत देते हैं, जैसे एक कमरा हो और उस कमरे में हजारों सालों से अंधेरा हो, हजारों साल से उस कमरे में कोई आया नहीं है, हजारों साल से उस कमरे में प्रकाश नहीं आया है, तो कोई व्यक्ति उस कमरे में आए और कमरे में आकर उसमें प्रकाश लाने का प्रयास करे, और प्रकाश लाने का प्रयास करने के लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, या उस अंधकार को गाली दे, कुछ भी करे, फिर भी वहां पर प्रकाश नहीं आ सकता है। उस हजारों साल से अंधकार भरे कमरे में केवल उस कमरे में जाकर कोई स्विच ऑन कर देता है, स्विच ऑन करते ही लाइट शुरू हो जाती है और वो प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो लाइट जब शुरू होती है तुरंत प्रकाश समाप्त हो जाता है। वह अंधकार यह नहीं कहता है कि हम तो हजारों साल से यहां पर बैठे हैं, हम तुरंत नहीं जाएंगे। नहीं, जैसे ही लाइट ऑन हुई वह हजारों हजारों सालों का प्रकाश अंधकार चला जाता है, वैसे ही जैसे ही व्यक्ति हरिनाम लेता है हजारों हजारों जन्मों का पाप जलकर भस्म हो जाता है। तेस्तान्यधानि पूयन्ते तपो दान व्रतादिभि ना धर्मज तद हृदयम् तदपिश अंग्री सेवया। कहते हैं जो पाप बड़ी बड़ी तपस्या से, बड़े बड़े दान से, यज्ञ से जो पाप नहीं मिटते हैं वह पाप भगवान से कृष्ण का नाम लेने से मिट जाते हैं। भगवान के नाम की बहुत बहुत महिमा बताई। यमदूत कहते हैं भगवान के नाम की इतनी महिमा है, परंतु अजामिल भगवान के नाम की महिमा जाने बिना ही नाम ले रहा था। ये तो आपने भगवान के नाम की महिमा बता दी, परंतु अजामिल भगवान के नाम की महिमा नहीं जानता था कि भगवान का नाम कितना महान है, कितना महिमानशाली है। विष्णुदूत कहते तो क्या हो गया, भले अजामिल भगवान के नाम की महिमा नहीं जानता था, अज्ञाना अथवा ज्ञाना, यदि कोई व्यक्ति अज्ञान से भी भगवान का नाम लेता है या ज्ञान से भी भगवान का नाम लेता है तो निश्चित संगीर्तित मघम पुंसो दहे दे दो यथा नल। अज्ञान से या ज्ञान से भगवान का नाम यदि लेता है तो उनका पाप वैसे ही जलकर भस्म हो जाता है जैसे दावाग्नि में बड़े बड़े बांस के झुरमुट जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान से या ज्ञान से, आचार्यगण दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई बालक अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है और बाजू में आग जल रही है, तो अज्ञान से भी यदि वह बालक उस आग में हाथ डाल देता है तो हाथ जल जाता है, और कोई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति भी उस आग में हाथ डाले तो भी हाथ जल जाएगा। अज्ञान से आग में हाथ डालो तो भी जलेगा और ज्ञान से आग में हाथ डालो तो भी जलेगा। एक साधारण आग जब अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है तो भगवान का नाम अपना प्रभाव कैसे छोड़ेगा। चाहे ज्ञान से लो चाहे अज्ञान से लो चाहे उल्टा लो या सीधा लो कैसे भी लो, यदि भगवान का नाम लेते हो तो निश्चित वह असर करेगा। जैसे दवाई, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और डॉक्टर ने उसे दवाई दी है तो दवाई में वो व्यक्ति जानता नहीं है इस दवाई में कितना कॉम्बिनेशन है क्या नहीं। उस दवाई के प्रभाव को जाने बिना भी यदि वह दवाई ले लेता है तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा जाने या न जाने, अजामिल ने भले भगवान की नाम की महिमा नहीं जानी है परंतु नाम वस्तु शक्ति का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है कि वह समस्त पापों से मुक्त करता है। विष्णुदूत और एक दृष्टांत देते हैं, यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदिच्छया अज्ञानतो अप्यात्म गुणम कुरियान मंत्रोप्युदाहृत। जैसे अमृत, जैसे कोई यदि कोई अमृत की विशेषता जाने या न जाने, अमृत की महिमा जाने या न जाने, पानी समझकर भी कोई अमृत को पी लेता है तो अमृत अपना प्रभाव निश्चित बताता है। ठीक उसी प्रकार और यहां पर अमृत का दृष्टांत देने का और एक भाव यह है कि अमृत के दो गुण होते हैं, एक तो अमृत रोगों को मिटाता है और दूसरा टेस्ट में बहुत मधुर होता है। अमृत में दो गुण है, रोगों को मिटाना और टेस्ट मधुर स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम अमृतमय है, अमृत के समान है। भगवान का नाम यदि कोई लेता है तो जन्म जन्मांतर के इस भव रोग से हमें दूर कर देता है और इसी के साथ साथ भगवान का नाम मधुर भी है, मधुराती मधुर है। भगवान का नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है, यदि कोई अपराध रहित भगवान के नाम का जप करने लगा तो इस संसार से विरक्त हो जाएगा, संसार की बड़े से बड़ी आसक्ति भी उसे मोहित नहीं कर पाएगा। चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में नाचते हुए गाते हुए कूदते हुए भगवान का नाम लेते थे तो कई लोग महाप्रभु को प्रश्न पूछते थे, कुछ लोग पत्थर भी मारते थे, कुछ लोग गाली भी देते होंगे कि ये क्या पागलों की तरह नाच रहे हैं। और एक बार किसी ने पूछ दिया ये पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं, भगवान का नाम लेना चाहिए किसी जगह पर बैठकर आराम से किसी आसन के ऊपर बैठकर। तब महाप्रभु बहुत नम्र भाव से उत्तर देते हैं कि गुरु मोहे मूर्ख जानी करी ल शासन। महाप्रभु कहते हैं कि मैं मेरे गुरुदेव के पास गया और गुरुजी के पास जाकर कहा कि गुरुजी मुझे वेद और शास्त्र का ज्ञान दीजिए। तो गुरु मोहे मूर्ख जानी, गुरु ने देखा कि मैं बहुत मूर्ख हूं, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम शास्त्र वास्त्र नहीं समझ पाओगे परंतु सभी वेद और शास्त्र का सार है भगवान का महामंत्र, तो तुम महामंत्र जपते रहो यही तुम्हारे लिए अच्छा उपाय है। तो मैं गुरु से महामंत्र लेकर आया और मैं महामंत्र जपने लगा और महामंत्र में मुझे इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, संसार से विरक्त होते गया, पागलों की तरह घूमते गया, नाचता गया, गाता गया। फिर से मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर कहा कि कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारो बल, ये आपने कैसा मंत्र दे दिया और इसमें कितनी शक्ति है, जपिते जपिते नाम करी लो पागल, जैसे जैसे मैं ये नाम जप रहा हूं वैसे वैसे मैं पागल होता जा रहा हूं, संसार भूल रहा हूं, घर छोड़ दिया, पार छोड़ दिया, कोई भी न धनम न जनम न सुंदरी कोई याद नहीं आता। तब मेरे गुरुदेव ने कहा हाँ नाम का फल आपको प्राप्त हो चुका है, आप जपते रहो नाचते रहो और गाते रहो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस प्रकार से विष्णु दूतों ने अपना प्रवचन समाप्त किया। अब सुखदेव गोस्वामी अपनी कॉमेंट्री दे रहे हैं, त एवं सुविनिर्णय धर्मम भागवतम नृप तम याम्य पाश निर्मुच्य विप्रम मृत्योर मुमोचन। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं कि हे नृप, हे राजन। सुखदेव गोस्वामी के संबोधन देने का तात्पर्य यह है, सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित महाराज को नृप कहने का तात्पर्य यह है कि राजन परीक्षित, आप भी एक राजा हो और राजा को चाहिए कि धर्म का पालन करे, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए आप भी धर्म का पालन करना और आप कर ही रहे हो। और एक आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि परीक्षित महाराज को मान लीजिए मन में संदेह होगा कि जैसे यमदूत को संदेह था, एक बार नाम लेने से भगवान नरक में जाने से बच गए, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी, वैसे ही भगवान का नाम लेने पर भगवान ने यम दूतों से अजामिल की रक्षा की। जैसे तुम्हारी रक्षा हुई थी वैसे अजामिल की रक्षा हुई, इसलिए इस प्रसंग पर तुम संदेह मत करना। और इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमांतिकम यमराज्ञे यथा सावत चच रक्षुर रिंदम। विष्णु दूतों ने कहा, देखो भाई, सभी ओर से हमने सिद्ध कर दिया है कि यह अजामिल पापी नहीं है, सभी ओर से हमने सिद्ध कर दिया है कि यह बहुत बड़ा धर्मात्मा है और धर्मात्माओं के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रेम से यहां से चले जाइए, नहीं तो हमें कुछ जबरदस्ती करनी होगी। तब यमदूत ने विष्णु दूतों की बात स्वीकार कर ली और विष्णु दूतों की बात स्वीकार करके द्विज पाशाद विनिर्मुक्तो गतभि प्रकृतिम गत। अजामिल को जो आधा बाहर निकाला हुआ था, विष्णु दूतों ने कहा चलो डालो अंदर फिर से, जैसे आपके उसमें है आधा बाहर, चलो डालो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी, पूरा सिद्ध हो चुका है कि यह धर्मात्मा है। तब तीनों विष्णुदूत यमदूत सिर खुजाकर कहने लगे, अब क्या करें, बचना है तो भागो यहां से इसे छोड़कर। तो यमदूतों ने अजामिल को फिर से फिट किया, थोड़ा सर्जरी कर दिया होगा, और यमदूत प्रणाम करके वहां से चले गए। और कहां गए, यमराज यथा सावम अच चक्षुर रिंदम। हे अरिंदम, हे परीक्षित, ये यमदूत इस जगह को छोड़कर डायरेक्ट यमराज जी के पास चले गए, वाया कहीं भी नहीं गए। वो आगे कथा आएगी, वहां जाकर क्या किए, डायरेक्ट यमराज जी के पास चले गए और यमराज जी को सब बात बताई कि हम गए थे और वहां पर ऐसा ऐसा हुआ। और यहां पर अजामिल, जब अजामिल को वापस अंदर डाल दिया गया, अजामिल स्वस्थ हो गया प्रकृतिम गत। और स्वस्थ होकर अजामिल ने तो पूरा संवाद सुना था, दोनों पक्ष का प्रवचन अजामिल ने सुना, और दोनों पक्ष का प्रवचन सुनकर अजामिल भक्त बन चुका था। इसलिए खड़ा होकर ववंदे शिरसा विष्णु किंक रान दर्शनोत्सव। अजामिल विष्णु दूतों को खड़ा होकर प्रणाम किया और प्रणाम प्रणाम करके दर्शन उत्सव, वे बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों नहीं होगा भाई, किसी को हार्ट अटैक आकर यदि बच जाता है तो कितना खुश होता है। यहां तो यमदूतों ने निकाल ही दिया था बाहर, कितना खुश हुआ होगा। इसलिए कह रहे हैं दर्शन उत्सव, जैसे हम हमारे घर पर उत्सव करते हैं वैसे अजामिल उत्सव में लग गया, क्योंकि दूसरा नया जीवन प्राप्त हुआ था अजामिल को। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सासा पश्यस्तस्य तत्रा अंतर ददे नघ। हे अनग, हे परीक्षित, अजामिल की इच्छा हुई कि मैं विष्णु दूतों के साथ कुछ बात करूं। विष्णु दूतों को प्रणाम किया, यमदूत तो चले गए थे, अब चार विष्णु दूत खड़े थे, अजामिल बैठा था। अजामिल की इच्छा हुई कि विष्णु दूत के साथ कुछ बात करूं, परंतु भगवान के पार्षद विष्णु दूत समझ गए कि ये कुछ बोलना चाह रहा है, इसलिए अजामिल कुछ बोले उसके पहले ही वे भी वहां से अप्रकट हो गए, चले गए, अजामिल अकेला हो गया। जब इस प्रकार से सुना तो आचार्य गण अपनी टीकाओं में कहते हैं कि महाराज परीक्षित को थोड़ा दुख लगा। महाराज परीक्षित को हुआ कि मेरे अंत में भी ऐसा होगा तो भगवान के पार्षद मुझे यहां पर छोड़कर चले जाएंगे, तो तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, डरो मत राजन, तुम अनग हो। अनग संबोधन दे रहे हैं, तुम निष्पाप हो, तुम इतने पवित्र हो कि तुमको विष्णुदूत छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हें तो लेकर ही जाएंगे। इसलिए इस श्लोक में अनग संबोधन दिया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अजा मिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रिवेदम च गुणाश्रयम। क्योंकि अजामिल ने विष्णुदूत और यमदूत का पूरा संवाद सुन लिया था, इसलिए भक्तिमान भगवत याशु महात्मा श्रवणाधरे अनुतापो महानाची स्मरतो अशुभ आत्मना। अजामिल खड़ा होकर सोचने लगा कि अब केवल भक्ति ही करनी चाहिए, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करनी चाहिए, और भक्ति करके मैं शीघ्र तुरंत पवित्र हो जाऊंगा, सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए अब मैं भक्ति करूंगा। परंतु अजामिल को के हृदय में बहुत पश्चाताप हो रहा है। अजामिल ने अपने जीवन में जो जो पाप किए हैं वे सारे पाप याद आ रहे हैं, और अपने पाप को याद कर करके अजामिल अफसोस कर रहा है। अफसोस कैसा है अजामिल का? अजामिल कहता है, अहो मैं परमम कष्टम अभूत विजित आत्मना। कितने दुख की बात थी, कितने खेद की बात थी कि मैं अजितेंद्रिय बन चुका था। येन विपला वितम ब्रह्म वृषलाम जाय आत्मना। मैं इतना इंद्रिय जीत हो चुका था, इतना इंद्रियों के वश में हो चुका था कि वेश्या को अपनी पत्नी मानने लगा, और उस वेश्या के किसी के पुत्र को मैं अपना पुत्र मानने लगा। बहुत दुख की बात। दिग्माम विगरितम सद्भि दुष्यत कृतकुल कंजलम हित्वा बालाम सतीम योहम सुरापिम असतीम अगाम। और इस वेश्या के संग के कारण, इस वेश्या के कारण मैंने मेरी पत्नी को त्याग दिया। कितनी सुंदर पत्नी थी, कितनी मेरी सेवा करती थी, कितनी इतनी सुंदर पत्नी को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। बिचारी का क्या हुआ होगा? निश्चित मनु संहिता में लिखा है कि किसी भी गृहस्थ को अपनी पत्नी को त्यागना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में। जीवन है, भौतिक संसार है, इसमें कष्ट होंगे, दुख होंगे, परंतु यह कष्ट को सहना चाहिए, और इसे सहते हुए कैसे भी करके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यह डाइवोर्स लेना, किसी को छोड़ देना, यह हमारे शास्त्र में कभी कहीं नहीं लिखा है। और यदि कोई पति अपने पत्नी को छोड़ देता है तो निश्चित अजामिल की तरह एक ना एक दिन अफसोस करेगा, जैसे ये अफसोस कर रहे हैं। धिगमाम, धिक्कार है मुझे कि मैंने मेरी इतनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया। वृद्धा वनाथ पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो माया धुना त्यक्त्वा रक्रु गेन नीचवत। मैं इतना नीच बन चुका था, इतना गिर चुका था, मैंने मेरे माता पिता को छोड़ दिया। मेरे माता पिता के का कोई नहीं था, वृद्ध थे, बूढ़े थे, और साथ ही साथ नान्य बंधु उसके कोई मित्र नहीं थे, उनके कोई समाज वाले नहीं थे, और उनका कोई और पुत्र भी नहीं था, मैं अकेला था। मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ दिया, और तपस्विनो कितनी तपस्या करके मुझे बड़ा किया। वास्तव में इस संसार में माता पिता अपने बच्चे की बहुत सेवा करते हैं, वे स्वयं भूखे रहते हैं, वे स्वयं कष्ट सहते हैं, परंतु अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते हैं। परंतु जब बच्चे बड़े होकर उसी माता पिता को घर से निकाल देते हैं, तब माता पिता बहुत दुखी होते हैं। इसलिए गुजराती में एक बहुत सुंदर गाते हैं ना, काढ़ी मुखे थी कोड़िया मो मादई मोटा करिया, काढ़ी मुखे थी कोड़िया मो मादई मोटा करिया, ये पुनित जन ना काल जा पत्थर बनी चुंद शो नहीं, ये पुनित जन ना काल जा पत्थर बनी चुंद शो नहीं। माता पिता, माता और पिता वे स्वयं भूखे रहते हैं और पुत्रों को खिलाते हैं। अजामिल याद कर रहा है उस दिन को, मेरे माता पिता ने कितना दुख सह कर मुझे बड़ा किया था और उसी माता पिता को मैंने घर से बाहर कर दिया। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भ्रूश दारुणे धर्मग्ना कामिनो यत्र विदंती यम यातना। निश्चित मैंने इतने पाप किए हैं, निश्चित मैं नरक में गिरूंगा, निश्चित मैं नरक का भागी होऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बहुत पाप किए हैं। कितने पाप किए हैं? ठाकुर भक्ति विनोद अपनी भाषा में कहते हैं, यौवने यखन धन उपार्जने हयनु विपुल कामी। यौवने यखन धन उपार्जने हयनु विपुल कामी। यौवन अवस्था में मैं इतना कामी था, मैं केवल धन के पीछे ही पड़ा रहा। धर्म समारिया गृहिणी घर घरी नु तखन आमी। और धन प्राप्त करके मैं गृहिणी को, एक पत्नी को घर पर लाया और घर पर लाकर केवल उसी के पीछे धन को उड़ाता रहा। संसार पाताये ताहार सहित काल लक्ष्य केनु कत बहु सूत सूता जन्म लभिल मर में हईनु हत। संसार में केवल पत्नी के पीछे पड़ा रहा, जैसे नारी विवश नर सकल गोसाई, केवल पत्नी के पीछे, पत्नी की सेवा करने में। और पत्नी के साथ रहते रहते जब लंबा समय बीत गया तब पुत्र पैदा हुए। पत्नी और बच्चों की सेवा करते करते जीवन का लंबा समय बीतता रहा। संसारे भार बाढ़े दीने दीने अचल होई लगती बार्धक्य आसिया घेरील अमारे अस्थिर होई लगती। ये संसार का भार ढो ढोकर मैं बूढ़ा हो गया। कुटुंब पोषाय वियन निजायु, कुटुंब का भरण पोषण करने में, पत्नी को प्रसन्न करने में, पुत्र को खुश रखने में, समाज को खुश रखने में बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपसे संतुष्ट हूं। अब देखिए, एक पति पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन आज तक किसी पति ने कहा कि पतिदेव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं? कभी नहीं। कितना भी आप लाकर दोगे, कितना भी दोगे, तो उसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। पुत्र के लिए व्यक्ति मर जाएगा, गधे की तरह मेहनत करेगा, लेकिन पुत्र कभी ऐसा नहीं कहेगा बस पिताजी अब मेरे लिए आप कुछ मत करो, कभी नहीं। संसार का भार बेचारा ढोते रहता है। और भक्ति विनोद ठाकुर अपनी भाषा में कहते हैं, ये भार ढोते ढोते तो मैं बूढ़ा हो गया। पीड़ाय अस्थिर चिंताय जरित अभावे ज्वलित चित उपाय न देखी अंधकार मोय एकने होए ची भीत। अब तो बूढ़ा हो गया हूं, अब यह शरीर काम नहीं कर रहा है, यह चित मन ठीक से ठिकाने पर नहीं है, अब जीवन में सुधरने के लिए कोई उपाय नहीं बचा है, सब जगह पर अंधकार ही अंधकार है, किसी जगह पर राह नहीं है। संसार तटीनी स्त्रोत्र न है शेष मरण निकटे घोर सब समापिया भजीव तुमाया ये आशा भी फल मोरा। बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार को छोड़ दूं, यदि मैं ऐसा सोचूं कि सबको छोड़कर प्रभु मैं केवल तुम्हारा भजन करूं तो यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब शरीर काम करना भी बंद हो चुका है। वास्तव में बूढ़े होने के बाद सोचेंगे कि हम भक्ति करेंगे तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति ठीक से लेटरिन भी नहीं कर सकता है, वो भजन क्या करेगा। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि अब मैं सोचूं सब कुछ त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज कर मैं भजन करने लगूं तो ये भी मुझसे होने वाला नहीं। अबेशुन प्रभु आमी गतिहीन भक्ति विनोद कय तव कृपा बिना सकली निराशा देह मोरे पदाश्रय। हे प्रभु अब तो सब आशा छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूं और आपके कृपा की राह देख रहा हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि आपका सर सबसे बड़ा गुण है कि आप कृपा के सागर हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के समुद्र हो और मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। ठीक उसी प्रकार अजामिल भी पश्चाताप कर रहा है कि जीवन बीत गया भगवत विमुख रसों से और जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, परंतु भयउन विषय विराग और भवत बसतवा चौथापन आ गया, केवल पाप ही पाप करते रहा, भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। लेकिन अब किमिदम स्वप्न आहोस्वित साक्षात दृष्ट मिहाद्भूतम क्व याता अध तेये माम वकर्षण पाशपाण। लेकिन अब मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इतना सोचकर अजामिल अपने मन ही मन में यह सोचने लगा कि मैंने जो कुछ समय पहले जो देखा था क्या वह स्वप्न था या सही था, क्योंकि वास्तव में अजामिल सोच रहा है कि अथ तेक व गता सिद्धा चतवार चारु दर्शना विमोचन नियमानम बद्वा पाशे रदो अध। क्योंकि मेरे जैसा पापी मेरे जैसा खल कभी भी इस प्रकार से नरक में जाने से बच नहीं सकता है, तथापि मैं दुर्भगत से मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। विभुदे उत्तम दर्शने भवितव्यम मंगलेन इनात्मा में प्रसीदति। मुझे भगवान विष्णु के दूतों का दर्शन हुआ और यमराज के दूतों से मैं मुक्त हो गया। निश्चित मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, इसलिए लगता है कि मैंने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है, मैंने अगले जीवन में कुछ शुभ काम किया होगा, इसलिए मैंने भगवान के भक्तों का दर्शन किया और इसलिए मैं यमराज के दूत से बच गया। और वास्तव में अजामिल के जीवन का शुभ कार्य यही था कि उसने नारायण नाम लिया था, और यह नारायण नाम इसलिए लिया था क्योंकि उसके पुत्र का नाम था, और पुत्र का नाम इसलिए नारायण हुआ क्योंकि भगवान के भक्तों की कृपा थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस संसार में भगवान के भक्तों की कृपा के अलावा भक्ति का बीज कहीं आ नहीं सकता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता। भक्ति का बीज केवल गुरु वैष्णव भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है, इसलिए सभी भक्तों को वैष्णव का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हम प्रतिदिन गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। भक्ति प्रदान करने में शुद्ध भक्ति देने में एकमात्र गुरुदेव समर्थ है, जो वैष्णव है जो भक्त है। अन्यथा म्रियमाणस्य नाशु चे रुशलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जीवा वक्तु मिहारहत। यदि वैष्णव का संग नहीं हुआ होता, यदि वैष्णव की कृपा नहीं होती तो मेरे जैसे पापी व्यक्ति के मुंह में भगवान का नाम कैसे आता, और वह भी अंत समय में मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया। निश्चित ये वैष्णव की कृपा है, सभी भक्तों को वैष्णव का आदर करना चाहिए, उनकी कृपा से ही हमारे मुख में भगवान का नाम आता है। कोचाहम कितवह पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रप क्वच नारायणा यति भगवत धाम मंगल। मैं कपटी पापी मैं निर्लज निरपत्र पर मेरे मुख से भगवान का कल्याणकारी नाम निकला, मैं धन्य हो गया। अब अजामिल के मन में भक्ति करने के लिए सोच रहा है कि विमुच्य तमिमं बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सोच शांतो मैत्र करुण आत्मवान। अजामिल सोच रहा है कि अब केवल मैं भक्ति करूंगा, अब मैं सभी जीव के प्रति सुहृत बनूंगा, अब मैं आत्मवान, मैं मेरी इंद्रियों के ऊपर मन को संयमित करूंगा और सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। मोचिये ग्रस्त मात्मानं योषिन मयात्म मायया विक्रीडितो ये वाहम क्रीड़ा मृग इवाधम। उस वेश्या के संग में मैं बंध गया था, वेश्या की उस स्त्री की आसक्ति में मैं फंस गया था और मैं ऐसा फंसा हुआ था जैसे मदारी के हाथ में बंदर नाचता है। नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मर मर कटकी नारी। आज के पुरुष की हालत बंदर के जैसी है, बेचारे नाचते वो डुगडुगी बजाते रहता है मदारी और नाचता रहता है। चलो चलो राजा बनो तो राजा बनता है, चलो सिपाही बनो तो डंडा हाथ में लेता है। आज के पुरुष की हालत यही है। आज तुम एक संत बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि बंदर बहुत अच्छा प्राणी है, स्वच्छंद गति से विचरण करने वाला है, लेकिन ये माया में बेचारा फंस जाता है। पता है आपको बंदर पकड़ने वाले बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर पकड़ने वाले एक बहुत सुंदर पॉट चंबू होता है और वो कांच का होता है और उसमें वो चने डालते हैं। उसका मुख जो होता है बहुत पतला होता है, एक समय पर एक छोटा सा हाथ जा सके। मुख बहुत पतला होता है, नीचे से बड़ा होता है और उसमें चने डालकर बीच में छोड़ देते हैं। तो बंदर देखते हैं कांच का शीशे का वो पॉट है, इसलिए बंदर को दूर से चना दिखते हैं। बंदर जाता है और जाकर अपना हाथ डालता है वह चना निकालने के लिए। जैसे ही बंदर हाथ डालता है चला जाता है, चना को पकड़ता है, क्योंकि चना को पकड़ा इसलिए हाथ बड़ा हो जाता है उसकी मुट्ठी। तो चना पकड़कर जब हाथ निकालना चाहता है तब वह निकलता नहीं है। बेचारा बहुत मेहनत परिश्रम करता है लेकिन वो निकलता नहीं है। अब धीरे धीरे करके शिकारी वह मदारी उसके बाजू में आता है और वह देख रहा है कि ये आ रहा है। यदि वह चना को छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा, परंतु चना को छोड़ना भी नहीं चाहता है। देख रहा है बंदर को ऐसे ही पकड़ा जाता है, देख रहा है सामने से मुझे पकड़ने के लिए ही आ रहा है, लेकिन यहां से उसकी चने से आसक्ति नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार संसार के सब लोग देख रहे हैं कि मृत्यु आने वाली है, एक दिन मरने वाले हैं, परंतु संसार की आसक्ति से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है। समझना चाहिए, शास्त्र सुनकर पढ़कर इसे एहसास करना चाहिए। ममाहम इति देहादो हित्वा मिथ्याद धीमतिम धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। और इस वेश्या के साथ विवाह करके मम ये मेरी है और ये मेरे है, मम अहम यह करते हुए मैं केवल इसी में ही लगा हुआ था, परंतु अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा और भक्ति के द्वारा मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा और भक्ति में भी भगवान का नाम लूंगा और आदि भी। आदि भी का अर्थ होता है और भी सब नवदा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि सभी भक्ति के सभी अंगों के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से अजामिल इस प्रकार से सोच रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि हे परीक्षित, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। इस प्रकार से अजामिल भगवान के भक्तों का संग करने के कारण सुनिर्वेद वैराग्यशाली हो गया। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य, परंतु सुनिर्वेद का अर्थ होता है सुंदर वैराग्य। इस संसार में वैराग्य तो सब लोग करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि अब हम गलत काम नहीं करेंगे, अब हम मंदिर में जाएंगे, कुछ कभी कभी व्यसन भी छोड़ देते हैं, सिगरेट नहीं पीनेंगे, लेकिन एक दो महीने के लिए बाद में फिर से पीना शुरू कर देते हैं। परंतु ऐसा वैराग्य नहीं, यहां कहते हैं सुनिर्वेद, बहुत अच्छा वैराग्य, जो कभी भी यह वैराग्य टूटे नहीं, ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ और गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। और गंगा द्वार, गंगा जहाँ से बहती है उसे गंगोत्री कहा जाता है, और गंगोत्री में जाने के लिए जो द्वार है उस द्वार को हरिद्वार कहा जाता है। इसमें भी बहुत अर्थ है, हरि के द्वार में जाने के लिए, हर के शिवजी के द्वार में, शिवजी के पास जाने के लिए जो द्वार है, चारों धाम केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री ये सब का द्वार है, तो वह हरिद्वार। तो यहां पर गंगा द्वार का अर्थ होता है हरिद्वार। अजामिल अपने घर को त्याग कर पुत्र पत्नी की ओर देखे बिना वे हरिद्वार चला गया, और हरिद्वार में जाकर कहां गया, स तस्मिन देव सदन आसीनो योग मास्थित। वे एक देव सदन देवता के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गया, सदन का अर्थ होता है मंदिर, और मंदिर में जाकर योग मास्थित भक्ति योग में स्थित हुआ। अब यहां पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, अजामिल घर छोड़कर पत्नी छोड़कर पुत्र को छोड़कर हरिद्वार में जाकर मंदिर में बैठकर भक्ति शुरू की। वास्तविक यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें मंदिरों में जाना ही होगा। कुछ लोग सोचते हैं मन चंगा चंगा तो कथोटी में गंगा, घर बैठकर भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता। और हरे कृष्ण वाले तो पूरा दिन रविवार का पूरा दिन पड़े रहते हैं मंदिर, परंतु मूर्ख लोग नहीं जानते हैं भागवत क्या कहता है। स तस्मिन देव सदन, क्या अजामिल घर पे बैठकर भजन नहीं कर सकता था? हमसे बहुत बड़ा हो चुका था, विष्णु दूत का दर्शन हुआ था, घर पे बैठकर कर सकता था, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान घर पर नहीं मिले। एक बात याद आ रही है, एक बार एक राजा ने सोचा कि साहब से मिलना है, अल्लाह से भगवान को मिलना है, तो सोचा कि जंगल में जाऊंगा और भगवान को ढूंढूंगा। परंतु एक रात में विचार आया कि अब भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, घर बैठकर मिल जाएंगे, तो अपना निर्णय बदल दिया। और जब उस राजा ने अपना निर्णय बदल दिया, अपने घर पे बैठकर ही भगवान की प्राप्ति करना चाहता था, इस बात यह बात कबीर जी को पता चली। कबीर संत आप सब जानते होंगे, संत कबीर को जब यह बात पता चली तो संत कबीर एक ऊंटहारे का रूप लेकर, ऊंटहारा अर्थात ऊंट बेचने वाले, ऊंट बेचने वाले कुछ व्यापारी होते हैं, उसे ऊंटहारा कहा जाता है। तो संत कबीर ऊंटहारे के कपड़े पहनकर ऊंटहारे का रूप लेकर राजा के उस गांव में आए, और उस गांव में आकर सभी झोपड़ियों में जाकर पूछने लगे कि आपने मेरे ऊंट को देखा, मेरा एक ऊंट घूम गया है, क्या आपके घर पे तो नहीं आया? अब झोपड़ी इतनी छोटी सी, उसमें ऊंट का पांव भी नहीं रह सकता है, ऐसी झोपड़ी में जाकर पूछने लगे आपने मेरे ऊंट को देखा? गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, सभी घरों को खटखटाकर पूछने लगे मेरे ऊंट को देखा? सब लोग ने राजा को कंप्लेंट की, ये हमको परेशान कर रहे हैं, ऊंट थोड़ी ना, ऊंट का बच्चा भी हमारे घर में नहीं आ सकता है, और सब घर में जा जाकर। राजा ने बुलाया साहब कबीर संत को अपने राज्य में और कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कहा कि मेरा ऊंट घूम गया है, उसे ढूंढ रहा हूं सबके घर पर। राजा ने कहा इतनी बुद्धि नहीं है, इतना बड़ा ऊंट किसी के घर पे कैसे जा सकता है? कबीर जी ने कहा यही समझाने के लिए आया हूं, विभु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ आपके घर पे कैसे आ सकते हैं? आपको प्राप्त करना है तो मंदिर में जाना होगा, मंदिर में जाना होगा। स्थान का बहुत प्रभाव होता है, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान की बहुत महिमा है। अब देखिए जो किसान होंगे वह जानते होंगे, यदि बंजर जमीन में आप कितना भी सुंदर बीज रोपो, कितना भी पानी डालो, वो उगता नहीं है, लेकिन अच्छी भूमि में यदि वह बीज डालो पानी डालो तो वह 70-80 गुना होकर उगता है। जमीन का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है। भक्ति घर पे कर सकते हैं, परंतु जो मंदिर में कर सकते हैं वह घर में नहीं हो सकता। देव सदन, भगवान की प्राप्ति करनी है मंदिर में जाना होगा। नहीं तो जब कृष्ण अवतार भगवान को आना था और सभी देवता जब भगवान से रक्षा मांगने के लिए गए, तो क्या आपने अपने घर पे बैठकर नहीं मांग सकते थे? अपने घर पे बैठकर भगवान को नहीं बुला सकते थे? भागवत कहता है, अन्य शास्त्र कहते हैं कि सभी देवता शीर सागर के तट पर भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, चाहे राम अवतार में चाहे कृष्ण अवतार में। भगवान की प्राप्ति करनी है मंदिर में जाना होगा। इसे सभी भक्तों को निवेदन है। और मंदिर भी दूर नहीं है, प्रभुपाद जी की कृपा से इस दुनिया में 500 से भी अधिक इस्कॉन के मंदिर है, और हमारे लिए तो एक नहीं तीन तीन कृपा है। जो लोग चन्नी रोड इत्यादि वहां पर रहते हैं वहां राधा गोपीनाथ मंदिर है, जो लोग अंधेरी रहते हैं वहां पर श्री राधा रास बिहारी मंदिर है, और जो बोरीवली के हैं, दहीसर के हैं, मीरा रोड के हैं, तो मीरा रोड में बहुत ही सुंदर राधा गिरधारी मंदिर है। तो प्रति रविवार को बहुत सुंदर कार्यक्रम होते हैं, और राधा गिरधारी मंदिर में जाकर भजन कीजिए, नाम लीजिए, आरती कीजिए, प्रवचन सुनिए, निश्चित भगवान मिलेंगे। नहीं तो घर पे पड़े रहेंगे, सड़ेंगे, टीवी देखेंगे और कीड़ों की तरह मर जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए अपने आप को देव सदन भगवान के मंदिर में जाकर बिठाना चाहिए। अजामिल सतस्मिन देव सदन आसिनो योग मास्तित प्रत्याहरिते इंद्रिय ग्रामो योज मन आत्मनी। और अजामिल ने अपना मन अपने आत्मा के ऊपर केंद्रित किया, आत्म साक्षात्कार हो गया। ततो गुणेपि आत्मानं व्युज्य आत्म समाधिना युजे भगवत धामनी ब्रह्मण्य नु भवात्मनी। अजामिल ने उस वक्त मंदिर में बैठे बैठे भगवान का भजन करते करते अपनी इंद्रियों से आसक्ति को हटा लिया और परमात्मा में अपनी सभी इंद्रियों को लगा दिया। अजामिल के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार होने लगा और धीरे धीरे अजामिल भगवान की भक्ति के सभी स्तरों को पार करता गया। जैसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। अजामिल की वाणी गदगद होने लगती थी। अजामिल धीरे 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 उनके आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगती थी। इस प्रकार से अजामिल भगवान के प्रति प्रेम करने लगा। जब प्रेम के स्तर में पहुंचा, जब अजामिल की उम्र समाप्त हो गई, अर्यु पारत दिस तस्मिन द्राक्षी तत्पुरुषान पुर उपलभ्यो लब्धान प्राग भवंदे शीर्षा द्विज। और उस अंत समय में अजामिल को जो विचार यमदूत आए थे वही यमदूत आए, परंतु इस बार एक बहुत सुंदर विमान लेकर आए। और हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्य स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्व वर्तिनाम। और उस वक्त अजामिल अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर उस भगवान के पार्षद जो विमान लेकर आए थे उस सोने के विमान में सवार हुआ। साकम विहा यसा विप्रो महापुरुष किंकरे हेमं विमान आहरुय ययो यत्र श्रीयप्रति। और उस विमान में बैठकर अजामिल वहां गया जहां पर लक्ष्मी के पति भगवान नारायण भगवान विष्णु विराजमान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विचार करो परीक्षित, विचार करो भगवान के नाम की कितनी महिमा है। एवं स विप्ला वित सर्वधर्मा दास्या पति पति नो गृह्य कर्मणा। यह अजामिल अपने सभी धर्म से च्युत हो चुका था, ब्राह्मण से गिर गया था और सभी धर्म को त्याग कर दासिया पति एक वेश्या का पति बन चुका था। और पति तो गृह कर्मणा अपने सभी कर्मों से पतित हो चुका था। निपत्य मानो निरिये हितव्रत नरक में जाने के लिए राइट कैंडिडेट था, परंतु सद्यो विमुक्तो भगवान नाम घृणन। परंतु भगवान का नाम लेकर वे नरक में जाने से बचकर भगवान के धाम में चला गया। इसलिए इस संसार में जितने भी लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वास्तव में जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, नात परम कर्म निबंध कृतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानु कीर्तनाथ। मुमुक्षों के लिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई है तो है भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। हरे कृष्णा हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अजामिल तो भगवान के धाम में चला गया, परंतु जो व्यक्ति यह अजामिल की कथा को सुनता है, यह एमं परमं गुह्यं इतिहासं अघापहं शुणुया यश्रद्धया युक्तो यच्च भक्त्यानु कीर्तने। जो व्यक्ति इस अजामिल की कथा को सुनता है, यह अजामिल की कथा सुनने वाला भी मुक्त हो जाता है। सवे नवे स नरकम याति नेक्षितो यम किंकरे यद्यप्य मंगलो मर्त्यो विष्णु लोके महीयते। जो अजामिल की कथा को श्रद्धा के साथ ध्यान के साथ बिना सोए बिना झपकी मारे हुए, ये मैं कह रहा हूं, तो सब लोग समझेंगे हम लोग चले गए। तो जो श्रद्धा से और ध्यान से इस कथा को सुनता है, निश्चित यम किंकरे यमदूत से वह बच जाएंगे और मर्त्यो मरने के बाद विष्णु लोके महियते भगवान विष्णु के लोक में चले जाएंगे। और अंत में सुखदेव गोस्वामी सार इस कथा का सार कहते हैं, म्रिय मानो हरेर नामो गृणन पुत्रो पचारितम। अजामिल ने मरते समय और वो भी अपने पुत्र का नाम, मरते समय वो भी अपने पुत्र का नाम लिया था, फिर भी भगवान के धाम में चला गया। बताओ यदि हम श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के धाम में हम जाएंगे, इसमें क्या संदेह है। अजामिलो अपि गाद्दाम किमुत शुद्ध यागन, इसमें क्या संदेह है। निश्चित जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चित भगवान के धाम में जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम श्रीमद् भागवते षष्ठ स्कंदे द्वितीय अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा तो इस प्रकार से भगवान के नाम की परम महिमा है। भगवान का नाम लेने वाला सभी पापों से मुक्त होता है और निरंतर भगवान का नाम लेने वाला भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो तीसरे अध्याय में प्रारंभ में श्री राजुवाच परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु रुकिए रुकिए, आप ये सब ठीक है, अजामिल चला गया, ये सब कुछ ठीक हुआ, परंतु वो यमदूत जो बहुत क्रोधित होकर वहां से निकले थे, वे अपने यमराज के पास जाकर वो यमदूतों ने क्या किया, बहुत बड़ा बड़वा किया, स्ट्राइक की या हाहाकार किया, अपने स्वामी के पास जाकर यमदूत ने क्या किया। अब अगला तीसरा अध्याय इसमें यमदूत और यमराज जी क्या करेंगे ये संवाद है, और यमराज जी यमदूतों को प्रवचन करेंगे, ये हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। इस कथा का विराम यमराज जी के प्रवचन से होगा, तो यमराज जी का प्रवचन सुनने के लिए आप सब लोग कल पधारिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।